आज के इस उद्घाटन सत्र का शुभारंभ करने से पहले मैं सभी मंचस्थ महानुभावों का आह्वान कर रही हूँ इस स्टेज के ऊपर। आदरणीय भ्राता सुरेश भाई वी नाडा गौडार जी, कुलपति श्री रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत यूनिवर्सिटी गदग, आदरणीय राजयोगिनी सुदेश दीदी जी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका ब्रह्मा कुमारी संस्था, आदरणीय सरला दीदी जी अध्यक्षा कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग, आदरणीय भ्राता हितेंद्र भाई पटेल, जो भी सभा में मौजूद है कृपया आप सभी पधारे और मंच की शोभा को बढ़ाएं। आदरणीय भ्राता हितेंद्र भाई पटेल, चेयरमैन श्री गुजरात प्राकृतिक कृषि फेडरेशन गांधीनगर, आदरणीय भ्राता मृत्युंजय भाई जी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमारी, आदरणीय ब्रह्मा कुमार राजू भाई जी उपाध्यक्ष कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग, आदरणीय सुनंदा दीदी जी संयोजिका कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग, आदरणीय ब्रह्मा कुमार बद्री विशाल भाई जी पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर कृषि निर्देशालय लखनऊ, आदरणीय ब्रह्मा कुमार सुमंत भाई मुख्यालय संयोजक कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग। जो भी सभा में हाजिर हैं कृपया अपना स्थान मंच पर ग्रहण करेंगे। आप पधारिए और मंच की शोभा बढ़ाएंगे। हमारे अतिथि आज के इस कार्यक्रम का मंच पर पधारकर बहुत ही सुंदर शोभा का एक स्वरूप बनने जा रहे हैं। हम सब अपनी दिल की तालियों से, करतल ध्वनि से इन सभी मंचासीन महानुभावों का स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन करते हैं। जोरदार तालियां हो जाएं इन विशिष्ट प्रतिभाओं के लिए, इन महानुभावों के लिए। आज से शुरू हो रहे 5 दिवसीय इस राष्ट्रीय सेमिनार में पधारे हुए आप सभी कृषि क्षेत्र से जुड़ी विशिष्ट हस्तियां, कृषि निर्देशालय से पधारे हुए अधिकारीगण, आदरणीय सर्व आज की सभा की शोभा बढ़ाने वाले आप सभी आमंत्रित मेहमानों का परमात्मा के इस पवित्र प्रांगण में स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन है। अभी एक बार अपने लिए ताली बजा दीजिए। हमारा भारत देश कृषि और ऋषि संस्कृति का देश है। आध्यात्मिकता कृषि के साथ सदियों से, कई वर्षों से हमारे पूर्वजों ने जोड़कर रखी है, परंतु पिछले कुछ एक समय से हम सभी देख रहे हैं कि हमारी कृषि संस्कृति ने जो पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण किया, जिसके हाल और बेहाल स्थितियां हम सबके सामने हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा यह 5 दिवसीय जो बहुत ही सुंदर राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया है, जिसका विषय ही रखा गया था हमारे पूर्वजों ने जो कर्म किए इसी कृषि के लिए, वही विषय को लेकर आज से यह 5 दिवसीय सेमिनार शुरू होने जा रहा है। आध्यात्मिकता द्वारा सशक्त किसान और समृद्ध गांव। चलो आज के इस उद्घाटन सत्र का शुभारंभ हम परमात्मा अनुभूति और ईश्वरीय उपस्थिति के साथ करते हैं। सभी स्थिर, शांत और एकाग्र होकर बैठ जाएं। फिर से निवेदन करती हूँ, अपने मोबाइल को शांत कर दे।
ईश्वर से जा प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जा प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। उच्च विचार शुभ कर्मों से, उच्च विचार शुभ कर्मों से, जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जा प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। शीतल दृष्टि नम्र जीवन से, सबको वो सुख देता है। शीतल दृष्टि नम्र जीवन से, सबको वो सुख देता है। जैसे बरसे झरझर बादल, दिल से दुआएं लुटाता है। निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से, निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से, सुंदर रचता अपना जहान, सुंदर रचता अपना जहान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान।
जो दूसरों को शांति देते हैं, दुनिया उसको संत कहती है, और जो अन्य आत्माओं को सुख देते हैं, संसार उसे सज्जन कहते हैं। आज के इस मंच पर संगम है संतों और सज्जनों का। हम सभी मंचासीन महानुभावों का स्वागत करने जा रहे हैं पुष्प और बेज के द्वारा। मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों को आमंत्रित करती हूँ कि सभी महानुभावों को पुष्प अर्पण कर, जिन्होंने अनेकों के जीवन में खुशबू फैलाई है, सुख की राहत दी है, अनेक प्रकार के पद से अपने आप को तो श्रृंगारित किया लेकिन दूसरों को सुखी किया। बहुत ही सुंदर तुलसी के पौधों से स्वागत हो रहा है और हम सब की तालियां इस स्वागत में और ही खुशबू भर रही हैं। स्वागत के साथ साथ मैं महसाणा सेवा केंद्र की कुमारियों को आमंत्रित कर रही हूं कि आप स्टेज पर पधारें और नृत्य से अपना स्वागत सभी के सामने प्रस्तुत करें। नृत्य वो दिल की थनगनाहट है, नृत्य वो न सिर्फ पांव का आवाज लेकिन हृदय का आवाज है। ऐसे बहुत ही सुंदर नृत्य से स्वागत करने जा रही हैं महसाणा सेवा केंद्र की कुमारियां। इनकी कला को, इन कुमारियों की मेहनत को और इनके उमंग को एक बार हम तालियों से सम्मानित करें। महसाणा सेवा केंद्र की कुमारियां। थोड़ी कम पड़ी है, जितनी उनकी मेहनत उनसे भी अधिक हमारी तालियां। बहुत सुंदर प्रस्तुति हम सभी के सामने मेहसाणा सेवा केंद्र की कुमारियों ने रखी। अभी समय है शब्द पुष्पों से सभी का वेलकम करने का, और शब्द पुष्पों से स्वागत करने पधार रहे हैं आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार राजू भाई जी, जिनको देखते ही चेहरे से शांति, चलन से सादगी और व्यवहार से सरलता नजर आती है। ऐसे सद्गुणों के धनी आदरणीय ब्रह्मा कुमार राजू भाई, जो कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, भारत देश के अंदर चल रही शाश्वत यौगिक खेती और ग्राम दत्तक योजना के आप प्रेरणा स्रोत हैं। इन सेवाओं को लोकभोग्य बनाने के लिए आपने पूरे ही भारत देश के अंदर भ्रमण किया है। शब्द पुष्पों से सभी का वेलकम करेंगे आदरणीय ब्रह्मा कुमार राजू भाई जी।
हमारी आदरणीय सुदेश दीदी जी, डायरेक्टर ज्ञान सरोवर, आप सबके सन्मुख है, उनका सम्मान हो रहा है। ओम शांति। विश्व कल्याणकारी सर्वात्माओं की परम प्रिय परमात्मा पिता की प्यारी संतान, आज की ये सम्माननीय मंच, हमारी आदरणीय सुदेश दीदी जी, जो देश और विदेश में परमात्म प्रत्यक्षता के लिए सदा ही तत्पर रहती हैं, मैं इनकी सेवाओं के समाचार जब देखता हूँ, कभी भारत के किसी कोने में, कभी विश्व के किसी कोने में आप सदा ही भ्रमण करते, मैं समझता हूँ शायद कल ही हम सबके बीच पहुँची हैं। ऐसी आदरणीय दीदी जो ज्ञान सरोवर की डायरेक्टर हैं, सुदेश दीदी का मैं बहुत बहुत दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के इस स्वागत और उद्घाटन सत्र में हमारे विशेष अतिथि जो बहुत दूर से पधारे हैं, कर्नाटक गदक से, ऐसे उद्घाटक भ्राता डॉक्टर सुरेश बी नाडागौड़ा जी, कुलपति रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज यूनिवर्सिटी गदक, और साथ में हमारे पड़ोसी गुजरात से गुजरात प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड गांधीनगर से हमारे हितेश भाई पटेल जी पधारे हैं। ये सभी का विशेष इस ज्ञान सरोवर परिसर में, इस आध्यात्मिक वातावरण के बीच, जब आध्यात्मिकता द्वारा सशक्त किसान और समृद्ध गांव विषय पर एक सुंदर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ऐसे अवसर पर इनके अनुभव युक्त विचारों से हम सभी लाभान्वित होंगे। हम इन अतिथियों का विशेष दिल से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से और विशेष ग्राम विकास प्रभाग की ओर से बहुत बहुत दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की सेवाओं को दिन दूना रात चौगुना सदा ही प्रगति की ओर ले जाने वाले सर्व के शुभ चिंतक और अनेक नई नई योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले हमारे भ्राता ब्रह्मा कुमार बद्री विशाल भाई जी, जो लखनऊ से आज हम सबके बीच में पधारे हैं, पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर कृषि निदेशालय लखनऊ, आपने अनेक ग्राम विकास प्रभाग की सेवाओं में नए नए प्रोजेक्ट बनाए और सदा ही मुख्य वक्ता के रूप में आप अपने प्रवचन देते, और विशेष करके आपने जो लखनऊ में अपने सेवाओं की छाप डाली है, आज लखनऊ पूरे उत्तर प्रदेश से हमारे मध्य अलग अलग स्थानों के 13 डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर पहुंचे हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूं। बहुत खुशी की बात है, कितने लगन के साथ एक हर एक कृषि यूनिवर्सिटीज के, कृषि निदेशालय के डायरेक्टर्स यहाँ पहुँच जाएं। आप सदा ही हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं, बद्री विशाल भाई का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहता है, इसलिए भ्राता जी का मैं बहुत बहुत दिल से अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हमारे भ्राता मृत्युंजय भाई जी, जो सदा ही इतनी उम्र में चारों तरफ भ्रमण करते, अनेक आत्माओं को प्रेरित करते, बहुत बड़े बड़े सेवाओं के, ईश्वरीय सेवाओं की योजनाएं बनाते, उनको प्रैक्टिकल स्वरूप देते, आज हमारे इस सभा में अपने अनुभव युक्त विचार देने के लिए भ्राता जी हम सबके बीच में पधारे हैं। आदरणीय मृत्युंजय भाई जी का मैं बहुत बहुत दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारी इस ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा हमारी आदरणीय सहला दीदी अभी कुछ ही क्षणों में आपके बीच होंगी। कुछ कारण से वो मेहसाना से थोड़ा लेट निकली, पहुंच चुकी हैं, लेकिन कुछ समय में आप सबके मध्य आएंगी। उनका भी मैं बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस प्रभाग की सेवाओं को दिन रात बहुत लगन से, सक्रिय रूप से, अथक मेहनत करके हमारे मधुबन कोऑर्डिनेटर सुमंत भाई जी, जो सभा में आज स्टेज पर उपस्थित हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर जो आज स्टेज कोऑर्डिनेट कर रही हैं, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी तृप्ति दीदी जी, जो सदा ही ऑलराउंडर अनेक ब्रह्मा कुमारी बहनों को टीचर्स ट्रेनिंग देती, हर जगह पर आप ग्राम विकास प्रभाग की सेवाओं में बहुत रुचि रखती, ऐसी आदरणीय दीदी तृप्ति दीदी को मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारी इस विद्यालय की, इस प्रभाग की दूसरी राष्ट्रीय संयोजिका हमारी आदरणीय दीदी सुनंदा जी भी सभा में हैं, उनके भी प्रवचन हम कल परसों में सुनेंगे, उनका भी मैं बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पूरे भारत से जो कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की सेवाओं में संलग्न बहुत एक्टिव मेंबर्स हैं, हर प्रांत के, वो आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं, कुछ विशेष उनके साथ मीटिंग भी रखी गई है, इसलिए उन सब का भी इस सभा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी, मैं जानता हूं, ज्ञान सरोवर सबके लिए आकर्षण का केंद्र है, बहुत बड़ी संख्या में भाई बहनों की रजिस्ट्रेशन हुई थी, लेकिन यहां कुछ रिपेयरिंग कार्य के लिए मुझे बार बार कहा गया कि आपकी संख्या 300 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, जबकि हमारी संख्या 500 से ऊपर थी। बहुत कंट्रोल करने के बाद आज जितनी इनकी डिमांड थी, जितनी यहाँ अच्छी व्यवस्था दी जा सकती थी, उतने ही भाई बहने पहुंचे हैं, इसलिए आप सबका, जो भी आज के इस कार्यक्रम में आए हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सबके लिए एक आध्यात्मिक परिसर ज्ञान सरोवर, जिसका बड़ा सुंदर इतिहास है, ज्ञान का सरोवर है, और इस ज्ञान सरोवर के अंदर इतनी शांति, प्रेम, पवित्रता की जो प्रकंपन है, किरणें हैं, मैं समझता हूँ 3-4 दिन के इस प्रवास में आप इसका बहुत सुखद अनुभव करेंगे। आप सबके लिए जो विशेष 3-4 ऐसे सत्र रखे गए हैं, जिसमें राजयोग के कई लेसन्स दिए जाएंगे, हमारे इस यज्ञ के आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और यज्ञ की सेवाओं का इतिहास आपको सुनाया जाएगा, कुछ तनाव मुक्त बनने के ट्रिप्स दिए जाएंगे। इसलिए हम आप सबसे विशेष अनुरोध करते हैं, कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की कई बातें आप सब जानते हैं, लेकिन इस परिसर में आकर यहाँ के आध्यात्मिक वातावरण का, यहाँ के आध्यात्मिक ज्ञान का, यहाँ के योग का अच्छा अनुभव करके आप सब अपने अपने स्थान पर जाएं, क्योंकि अनुभव एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। कोई कुछ भी कहेगा, लेकिन अगर आप अनुभव करके जाएंगे तो कहेंगे हाँ मैंने देखा है, मैं जानता हूँ योग की शक्तियाँ क्या होती हैं। आध्यात्मिकता द्वारा सशक्त किसान और समृद्ध गांव, ये जो विषय रखा गया है, विशेष वर्तमान समय गांव के विकास के लिए सरकारें बहुत कुछ कोशिश कर रही हैं, फंड दे रही हैं, प्राकृतिक खेती पर भी बहुत सारे प्रचार प्रसार हैं, उनके लिए भी फंड निकाले जा रहे हैं, लेकिन सशक्त किसान बने तो समृद्ध गांव बने। जो खेती करने वाला किसान है, जो गांव में रहता है, उसको चरित्रवान बनाया जाए, उसके चिंतन धारा को परिवर्तन किया जाए, उसके चरित्र का निर्माण किया जाए। इसलिए ये एक बहुत सुंदर गहन विषय रखा गया है, जिस पर आप सभी चिंतन करना कि आध्यात्मिकता कैसे किसानों के चरित्र का उत्थान करती है, उन्हें सशक्त बनाती है। चार मुख्य बातें मैं कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि जब आध्यात्मिकता कहते हैं तो लोग कई बार कुछ कर्मकांड की तरफ ध्यान देते, शायद हमें कुछ भक्ति पूजा पाठ कथा कीर्तन ये करना पड़ेगा, लेकिन परमात्मा ने जो हम सबको आध्यात्मिक ज्ञान दिया, जिस आध्यात्मिक ज्ञान की यहाँ चर्चा होगी, जिससे यहाँ का वातावरण इतना सुखमय शांतमय बना हुआ है, वो आध्यात्मिकता कोई कर्मकांड नहीं है। स्वयं को पहचानना, मैं कौन हूँ, मैं इस सृष्टि पर कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, अगर हम आध्यात्मिकता को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम सबसे पहले अपने विचारों पर संयम प्राप्त करते हैं। आज जितने भी उपद्रव हैं, जितने भी अपराध हैं, उनका कारण है आत्मा का अपने संकल्पों पर, अपनी विचार शक्ति पर नियंत्रण नहीं है। और वो विचार शक्ति पर अगर कंट्रोल आ जाए, जो चिंतन कर रहा है उसमें बहुत सारी बातें व्यर्थ हैं, नेगेटिव हैं, जो दूसरों के लिए नुकसानकारक हैं, उस चिंतन धारा को परिवर्तन करना, उसका आधार है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता के द्वारा जब मुझे अपनी पहचान मिलती है कि मैं कौन हूँ और मेरी शक्तियाँ क्या हैं, तो वो शक्तियाँ जिसको हम मन कहते हैं, वो सबसे बड़ी आत्मा की शक्ति है। और मन के अंदर ही विचार संकल्प उठते हैं। मन पर नियंत्रण कैसे किया जाए, वो सहज राजयोग की विधि से आप सब सीखेंगे। और विचार संयम के साथ साथ समय कितना मूल्यवान है और समय को हम कहाँ कहाँ व्यर्थ कर रहे हैं, समय की वैल्यू क्या है, समय को बचाना, समय को सफल करना, ये आध्यात्मिकता का दूसरा पहलू है। तीसरा है कि हमारी इंद्रियां, हर एक इंद्रिय पर हमारा नियंत्रण हो, बिना कंट्रोल के जो आज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, इंद्रिय निग्रह अगर नहीं है, इन पर संयम नहीं है, तो कभी भी अपराधों को रोका नहीं जा सकता है। आध्यात्मिकता की शक्ति से हम इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। चौथा है कि हमारा जो धन है, अर्थ व्यवस्था है, अगर उसका हमें सही प्रयोग करना नहीं आता है, मान लो आज मुझे याद आता है हमारे बद्री विशाल जी यहाँ बैठे हैं, जब हमारी सरकार ने किसानों के खाते में 2,000 रुपया पहले डलवाए और उसमें भाई साहब निमित्त बने लखनऊ से, सब किसानों के खाते में 2,000 रुपया गए। और उस समय हमारी एक मीटिंग चल रही थी पुरी के अंदर, जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा में, तो वहाँ जो कमिश्नर और अधिकारी लोग सभा में आए थे, उन्होंने कहा कि आज खुशी की बात सुनाता हूँ कि हमारे किसानों के खाते में उनको सहयोग के लिए, बीज खाद के लिए 2,000 रुपया सरकार की तरफ से मिले। लेकिन खेद की बात यह है कि उसके बजाय आज शराब की दुकानों पर लाइन लग गई। आज व्यक्ति का धन किधर जा रहा है और उससे कितना उसका चरित्र पतन हो रहा है, जब तक उसने अपनी आदतों पर, अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त नहीं की है, तब तक आप खेती से या किसी भी प्रकार के व्यवसाय से कितना भी पैसा कमा लें, उससे पाप ही होगा, पुण्य नहीं होगा। इसलिए आध्यात्मिक शक्ति, अर्थ को, धन को कैसे व्यय किया जाए, उस पर भी बहुत ध्यान खिंचवाती है। तो आप इस आध्यात्मिक वातावरण में आए हैं, पहले अपने विचारों पर, अपने संकल्पों पर कैसे हम नियंत्रण करें, कौन से संकल्प करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, क्या हमारा अपने संकल्पों पर कंट्रोल है। अगर उस पर कंट्रोल आ गया तो इंद्रियों पर भी कंट्रोल आएगा। मन मेरा है, इंद्रियां मेरी हैं, मैं तो नहीं हूं, मेरा हाथ है, मेरा मुख है, मेरे कान हैं, लेकिन मैं कौन हूं। और जब उस मैं को मैं पहचान लूं, उस स्वरूप में स्थित हो जाऊं, आत्म निरीक्षण करूं कि मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, मैं आत्मा हूं, तो आत्मा अपनी सब इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखती है, जो चाहे वही करती है, जो चाहे वही सोचती है। तो ऐसे इस आध्यात्मिक वातावरण के अंदर आप सब पूरा लाभ लें, एक मिनट भी आपका व्यर्थ न जाए, ऐसी हमारी शुभ भावना है और आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ओम शांति।
राजू भाई जी का भी तहे दिल से हम सभी स्वागत करते हैं, तो तालियां तो हो जाएं स्वागत के लिए, हम सभी अपने लिए भी बजाएं और आज इस मंचासीन सर्व मेहमानों के प्रति भी। अभी हम सभी के बीच में हमारे कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा आदरणीय राजयोगिनी सरला दीदी जी पधार चुके हैं और हमारे कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका आदरणीय सुनंदा दीदी भी पहुंच चुके हैं। दोनों ही दीदियों का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों को आमंत्रित करती हूं। बहुत ही सुंदर तुलसी के पौधे से और खुशबूदार बेज से इन दिव्य देवियों का अभिनंदन स्वागत हो रहा है। अभी स्वागत की एक बहुत ही सुंदर परंपरा, वो है गीत और संगीत। ऊर्जावान और भावनात्मक गीतों से सभी का स्वागत सदा ही करते रहते हैं हमारा मधुर वाणी ग्रुप, आदरणीय सतीश भाई, आदरणीय नितिन भाई और अन्य सभी भाई भी हम सभी के बीच में हैं। आपकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि जैसा भी ग्रुप है, जैसा प्रसंग है, उसी अनुसार गीत की रचना आप स्वयं करते हैं, उसको कंपोज करते हैं और हम सभी के सामने वातावरण में उमंग फैलाते हैं अपने गीतों से। हम सभी स्वागत करने वाले इस मधुर वाणी ग्रुप का पहले हम स्वागत करें।
ओम शांति। एक बार सभी सास्वर संवेद स्वर में कहें ओम शांति। आध्यात्मिकता के द्वारा होंगे सशक्त सभी किसान, होंगे समृद्ध गांव हमारे, होगा भारत वर्ष महान। चलो चलें गांवों की ओर, बनाएं भारत गोकुल ग्राम। ग्राम विकास सम्मेलन में आपका स्वागत है सम्मान, आपका स्वागत है सम्मान। जोरदार तालियों से आप सब अपना अभिनंदन स्वीकार करें।
सशक्त सभी किसान, होंगे समृद्ध गांव हमारे, होगा भारत वर्ष महान, होगा भारत वर्ष महान। चलो चले गांवों की ओर, बनाए भारत गोकुल ग्राम। ग्राम विकास सम्मेलन में आपका स्वागत है सम्मान, आपका स्वागत है सम्मान। रे सनी रे कर सदा मगर मा पगर गसारे सारे, सनी रे कर सदा मगर मा पगर गसारे सा। आध्यात्मिकता के द्वारा आएगी आत्मनिर्भरता, प्रकृति और परमात्मा से तभी तो होंगी समीपता। आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान से, आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान से भारत की थी ऊंची शान। ग्राम विकास सम्मेलन में आपका स्वागत है सम्मान, आपका स्वागत है सम्मान। आध्यात्मिकता के द्वारा होंगे सशक्त सभी किसान, होंगे समृद्ध गांव हमारे, होगा भारत वर्ष महान, होगा भारत वर्ष महान।
आपकी तालियां होनी चाहिए बहुत खुशी के पल में।
समृद्ध होने से मतलब है सुख शांति से हो भरपूर, आध्यात्मिकता के बिना है आज सभी आनंद से दूर। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, सशक्त रहेगा सदा समाज। ग्राम विकास सम्मेलन में आपका स्वागत है सम्मान, आपका स्वागत है सम्मान। आध्यात्मिकता के द्वारा होंगे सशक्त सभी किसान, होंगे समृद्ध गांव हमारे, होगा भारत वर्ष महान, होगा भारत वर्ष महान। रे सनी रे कर सदा मगर मा पगर गसारे सारे, सनी रे कर सदा मगर मा पगर गसारे सा। आध्यात्मिकता क्या है जाने आध्यात्मिक संसार में, अपने घर में आप पधारे प्यारे प्रभु परिवार में। ज्ञान सरोवर बना मनोहर, ज्ञान सरोवर बना मनोहर, मिलती यहाँ मीठी मुस्कान। ग्राम विकास सम्मेलन में आपका स्वागत है सम्मान, आपका स्वागत है सम्मान। आध्यात्मिकता के द्वारा होंगे सशक्त सभी किसान, होंगे समृद्ध गांव हमारे, होगा भारत वर्ष महान, होगा भारत वर्ष महान। आपका स्वागत है सम्मान, होगा भारत वर्ष महान। आपका स्वागत है सम्मान, होगा भारत वर्ष महान। आपका स्वागत है सम्मान, होगा भारत वर्ष महान।
सुंदर, अति सुंदर। हम सभी के सामने मधुर वाणी ग्रुप ने बहुत ही सुंदर आध्यात्मिकता के द्वारा किस प्रकार किसान सशक्त बनेगा और गांव समृद्ध बनेंगे, प्रवचन को शब्दों का स्वरूप और शब्दों को गीत का स्वरूप दिया। हम फिर से तालियों से मधुर वाणी ग्रुप का अभिनंदन अभिवादन करते हैं। आज का जो हमारा मुख्य विषय है, आध्यात्मिकता से हम अपने किसानों को एम्पावर करें, हम अपने गांवों को फिर से समृद्ध बनाएं। इस विषय का स्पष्टीकरण करने के लिए हम सभी के बीच में पधार रहे हैं आदरणीय ब्रह्मा कुमार बद्री विशाल भाई जी, कृषि क्षेत्र से संबंधित एक ऐसी तेजस्वी और ओजस्वी प्रतिभा कि जिसने हजारों नहीं लेकिन लाखों किसानों का राहबर बन करके एक अच्छी और ऊंची दिशा प्रदान की है। आप पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर कृषि निदेशालय लखनऊ से हैं, कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की राष्ट्रीय कोर कमिटी के आप सदस्य हैं। किसानों के कल्याण के लिए आपने अनेक योजनाएं बनाई हैं और किसान सम्मेलन, किसान अभियान आपके द्वारा एक दो नहीं लेकिन अनेकों की संख्या में इस भारत वर्ष के अंदर आयोजित किए गए हैं और इसी के उपलक्ष में आपको सरकार और समाज के द्वारा अनेक पुरस्कारों और अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आज के इस उद्घाटन सत्र का प्रमुख वक्ता आदरणीय बद्री विशाल भाई जी को आमंत्रित करती हूँ आज के इस विषय को स्पष्ट करने के लिए। आदरणीय बद्री विशाल भाई जी,
ओम शांति। फिर से बोलना पड़ेगा, ओम शांति। सम्मानित मंच और सभा में उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, दीदी ने अभी परिचय दिया, पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर कृषि विभाग, 40 साल सेवा करने का अवसर कृषि विभाग में मिला वो अलग बात है, वो एक ऐतिहासिक कार्यकाल था और ऐतिहासिक कदम परमात्मा की कृपा से उठाए, लेकिन उससे पहले जो जड़ है, जो न्यू है, वो एक किसान की। बाई बर्थ मैं किसान था, किसान परिवार का था और अपने हाथ से हल चलाने वाला किसान, खेती किया, खेती करा रहा हूं और खेती वाले विभाग में 40 साल तक अपने जीवन का किसानों के कल्याण में लगाया। तो ये प्रस्तुतिकरण जो आज आपके सामने देने जा रहा हूं, ये अपना स्वयं का अनुभव है। किसान के रूप में, एक अधिकारी के रूप में और इस कृषि और ग्राम विकास प्रभाग में जुड़ने के बाद जो हमने अनुभव किया कि इस समय किसान को क्या जरूरत है, उन सब का समावेश इसके अंदर आपको मिलेगा। आज हर जगह बात होती है किसान सशक्तिकरण की और जो भी बात करते हैं, सरकारें सोचती हैं, वैज्ञानिक सोचते हैं, पता नहीं वो किसान का नजरिया है या नहीं नजरिया है उनका, वो क्या चाहते हैं, कहाँ मिसिंग है जिसके कारण वो सशक्त नहीं हो पा रहे हैं, ये एक विचारणीय विषय है। लेकिन मैंने देखा कि जो प्रयास इस समय चल रहा है वो प्रयास बिल्कुल एकांगी है। लोग ये सोचते हैं कि अगर किसान को आर्थिक रूप से सशक्त कर दिया जाए तो उसका सशक्तिकरण हो जाएगा, गांव समृद्ध हो जाएंगे। लेकिन ईश्वरी विश्वविद्यालय का मानना है, और मैं अपने अनुभव के आधार पर अभी आपको जो प्रस्तुतिकरण दूंगा उसमें आपको महसूस करा दूंगा कि आर्थिक सशक्तिकरण, सिर्फ आर्थिक सशक्तिकरण से किसान सशक्त नहीं हो सकता, समृद्ध नहीं हो सकता। लेकिन सिर्फ आध्यात्मिक सशक्तिकरण से वो सशक्त हो सकता है, गांव समृद्ध हो सकता है, भारत सोने की चिड़िया बन सकता है। ये विषय किसी ने नहीं उठाया, ये केवल और केवल हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों ने, ईश्वरी विश्वविद्यालय ने और उसके कृषि और ग्राम विकास प्रभाग ने उठाया। क्यों? क्योंकि उसने अध्ययन किया गहराई से कि हमारी सनातन संस्कृति क्या थी और उसमें कौन सा गहरा विज्ञान छिपा हुआ था हमारी सुख और समृद्धि का। तो अगले कुछ मिनटों में मैं आपको इस बात के लिए महसूस कराऊंगा कि आध्यात्मिक सशक्तिकरण के द्वारा ही किसान सशक्त और समृद्ध हो सकता है। आज इस सभा में पहली बार यहां पर कौन आए हैं, जरा हाथ खड़ा करेंगे। अरे वाह, बहुत सारे भाग्यशाली लोग यहां पर बैठे हुए हैं। ये पैराडाइज ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, ये प्लेस अद्भुत है, और यहां पर आप अनुभव करके जाएंगे। क्या अनुभव करके जाएंगे? कि आध्यात्मिकता क्या है और उससे कैसे हम सशक्त हो सकते हैं और कैसे किसानों को हम सशक्त कर सकते हैं। क्योंकि अनुभव से बड़ी कोई अथॉरिटी संसार में नहीं है। अभी भगवान के महावाक्य थे कि अगर आपने शक्कर खा लिया और मीठी है, आपको महसूस हो गया, आपने अनुभव कर लिया, और हजारों लाखों लोग कहें कि शक्कर मीठी नहीं होती है, वो कड़वी होती है, आप मानेंगे? मानेंगे? तो आप यहां अनुभव करने आए हैं और अनुभव करिएगा कि हमारी सनातन संस्कृति क्या थी और कहां पर कमी आई जिसके कारण किसान कमजोर हुआ और उस कमी को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। तो ये आज का विषय है, आध्यात्मिकता क्या है। अभी हमारे राजू भाई साहब ने बताया कि पहले तो स्वयं को जानना, ये ईश्वरी विश्वविद्यालय का पहला पाठ है जो आप सभी यहां से पढ़ेंगे समझेंगे। और इस आध्यात्मिकता के द्वारा रचयिता से प्यार होता है और उसकी रचना से प्यार होता है। रचयिता परमपिता परमात्मा और रचना ये सृष्टि, ये प्रकृति। और जब प्यार होता है तो आपके कार्य में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। प्यार के साथ करना और स्वार्थ के साथ करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है और बहुत सारे सकारात्मक गुण आपके अंदर आते हैं और आप समाज के लिए अच्छा करते हैं। अगर हम कृषि की बात करें तो किसान के संदर्भ में आध्यात्मिकता का क्या मतलब है? तो यहां पर जो बेसिक बात है वो ये है कि आध्यात्मिकता से व्यक्ति और व्यक्तित्व का विकास होता है और व्यक्ति श्रेष्ठ है, उसके विचार श्रेष्ठ हैं, तो उसके द्वारा किए गए हर कार्य श्रेष्ठ होंगे। तो कहते हैं कि योगा कर्मसु कौशलम, योग से कर्म में कुशलता आती है। तो जब किसान योगी हो जाता है, उसका कनेक्शन प्रकृति से जुड़ जाता है और परमात्मा से जुड़ जाता है और दोनों से प्यार करने लगता है, तो उसका हर कार्य श्रेष्ठ होने लगता है, मानसिक शांति मिलती है, तनाव में कमी आती है, बेहतर निर्णय क्षमता होती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है, समाज में नैतिकता और विश्वास बढ़ती है, एकता बढ़ती है। और इसका वर्णन हमारे वेदों में है कि किसान कैसे आध्यात्मिक खेती करता था। ऋग्वेद में कहा गया है कि पृथ्वी और अन्न ये देवता के समान है, अन्नम ब्रह्म। वर्षा के लिए प्रार्थना करता है किसान, खेती से पहले यज्ञ करता है, पूजा करता है, बैल की पूजा, धरती की पूजा, बीज की पूजा, हल चलाते समय वाइब्रेशन देना, फिर तैयार होती है फसल, प्रकृति का आभार व्यक्त करना, और उसके बाद फिर जब वो तैयार करके फसल लाता है तो नमन करना, ये सारे उसके प्राकृतिक रूप से क्रियाएं वो करता था। वेदों में अरवा चीसु के भव सीते वंदा महत्वाम यथा न सुफला ससी यथा न सुफका ससी, यानी उस हल की फाली की वंदना होती है, माता भूमि पुत्र एवं पृथ्व्या, यानी इस धरती से और आकाश से संबंध जोड़ करके वो कार्य करता है, आचरणात्मक संबंध जोड़ता है, उससे प्यार बढ़ता है। महाकाव्यों में रामायण और महाभारत में राजा जनक भी हल चलाते थे, भूमि को माता कहा गया है, पृथ्वी माता, और रामचरितमानस में तो अनेक जगह पर वनबाघ पोन वाटिका सरकूप बापी सो वहीं सुर नाग मुन गंधर्व कन्या रूप मुन मन मोहि, यानी इस प्रकृति का सुंदर वर्णन उसमें किया गया है। तुलसी तरवर विविध सुहाए कहूं कहूं सी कहूं लखन लगाए, यानी वृक्षारोपण कितना जरूरी है। उसमें कहते हैं कहीं पर सीता ने वृक्षारोपण किया है, तुलसी के पौधे लगाए हैं, और कहीं पर लखन जी ने लगाए हैं। तो प्राचीन ग्रंथों में आपको प्रकृति को देवता मानने का उदाहरण मिलेगा, खेती से पहले पूजा करने की विधि मिलेगी, भूमि को माता समझने की विधि मिलेगी, यज्ञ और अनुष्ठान करने की आपको उसमें जानकारी मिलेगी, फसल कटाई को एक उत्सव की तरह मनाते हैं। ये हमने आपके सामने जो उदाहरण रखा है पांडुलिपि वृक्षायुर्वेद की है, 1000 वर्ष पूर्व जो आपके सामने प्रमाणिक और पांडुलिपि उपलब्ध है वो वृक्षायुर्वेद है, जिसमें विभिन्न प्रकार से कैसे किसान खेती करेगा, और इस पे हमारी डॉक्टर सुनीता पांडे जी बैठी, काफी अध्ययन है इनका, ये प्रोफेसर पंतनगर की हैं और इस पे बहुत बड़ा काम इन्होंने किया हुआ है। तो उसमें भी पहले सुनीता पांडे जी का स्वागत करें, अभी आपके सामने अगले सत्रों में आपसे मिलेंगी। तो इसमें वृक्ष से कैसे व्यवहार किया जाता है, कैसे प्रेम पूर्ण उससे संबंध स्थापित करके उसे रोपित किया जाता है, पुत्र के समान उसे माना जाता है, तब वो भरपूर फल देता है, इसमें गारंटी के साथ कही गई है। ये वृक्षायुर्वेद 1000 वर्ष पुराना है और इसे सुरपाल ने लिखा था, जो साउथ इंडिया के राजा भीमपाल के यहाँ मंत्री था, दरबारी था और वैद्य था। तो जितने पुरातत्विक खोज हुए हैं सिंधु घाटी की सभ्यता प्राचीन सभ्यता है, उसमें भी आपको ये दिखाई पड़ेगा कि कैसे खेती करते समय उसको देवियों की पूजा, प्रकृति की पूजा की जाती थी। और भारतीय परंपराओं में आज भी ये जीवित है, मकर संक्रांति, पोंगल, बैसाखी, ओणम, जितने भी त्योहार हैं कृषि की, ये सब उसी से संबंधित हैं। लेकिन मिस्टेक क्या हुई कि हमने कृषि को अर्थशास्त्र का विषय बना दिया, ये वास्तव में दर्शन शास्त्र का विषय है। दर्शन का मतलब क्या होता है, दर्शन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? आप सभी दर्शन किए हैं कभी कि नहीं किए? नहीं, आवाज नहीं आ रही, अच्छा नहीं लग रहा है, किसी को पता नहीं दर्शन का मतलब? वास्तविकता को जानना। और आवाज क्यों नहीं आती भाई? आज हम मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं, ये कहते हैं कि नहीं, फला देवी के दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन माना सीधा सा अर्थ है देखना। तो दर्शन शास्त्र क्या कहता है, जो आप देख रहे हैं उसके बारे में सोचिए, ये पेड़ पौधे किसके लिए, ये पक्षी किसके लिए, ये तितलियां किसके लिए, ये केचुए किसके लिए, ये मेढक किसके लिए, ये नदियां किसके लिए? आपको जवाब मिलेगा, ये सब हमारे लिए है। ये भारत की सनातन संस्कृति है, ये सब हमारे लिए है। और हम क्या कर रहे हैं, जो हमें सब कुछ दे रहे हैं उन्हें हम बर्बाद कर देना चाहते हैं, उन्हें नष्ट कर देना चाहते हैं, पेड़ों को काट देना चाहते हैं, नदियों को सुखा देना चाहते हैं, धरती को जहर पिलाना चाहते हैं। क्या यही हमारा दर्शन है? विचार करने की बात है कि हमारी सनातन संस्कृति कितनी गहरी है। आप देखें, हमारे यहां संपूर्ण अहिंसक संस्कृति है, संपूर्ण अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म। तो बिल्ली को भी हमारे यहां मारा नहीं जाता, सांप को भी मारा नहीं जाता। बिल्ली को मारने पर क्या सजा है, क्या सजा है? सोने की बिल्ली दान करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चूहों को खाती किसान का मित्र है, और अगर आपने उसे मार दिया तो एक चूहा साल भर में 8 से 10 बार प्रजनन करता है और 8 से 10 बच्चे पैदा करता है, और उनके बच्चों को बच्चे होते हैं, और एक चूहे के कारण इतना नुकसान होता है कि उससे सोने की बिल्ली तैयार हो सकती है। इसलिए सोने की बिल्ली दान करने की सजा निर्धारित है हमारे यहां। अब बिल्ली रास्ता काट गई तो नहीं जाना है, अशुभ हो जाएगा। ये भारतीय संस्कृति है, बिल्ली अपने टारगेट की तरफ जा रही है, अगर आपने उसे डिस्टर्ब कर दिया तो टारगेट मिस हो जाएगा, सड़क के दूसरी तरफ चूहा उसे दिख गया है, इसलिए आपको रोका जा रहा है, आपको उधर नहीं जाना है। सांप को दूध पिलाते हैं नाग पंचमी में, वो सांप चूहे के बिल में रहता है, चूहे को खाता है। ये नेचुरल हमारी व्यवस्था है, संपूर्ण अहिंसक। आपको प्रकृति को डिस्टर्ब नहीं करना है, प्रकृति से प्यार करना है, उसकी व्यवस्था को सुरक्षित रखना है, यही हमारा अध्यात्म है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये हमारे इसके अध्यात्म की मूल भावना है। और ये जितने भी चीजें हैं, अगर इसमें मैं व्याख्या करूं तो घंटों में इसमें बता सकता हूं। हिरण्याक्ष राक्षस जो है पृथ्वी को कैसे निकाल करके लाए वाराह अवतार, ये पृथ्वी क्या है, लोभ वृत्ति, हिरण्याक्ष लोभ वृत्ति है जो धरती को रसातल में ले जाती है, उसे हमें निकालना है। हमें प्रकृति की रक्षा करनी है, हमें अहंकार की पूजा नहीं करनी है जो गोवर्धन पूजा है, हमें गायों के साथ रहना है, उससे प्यार करना है। ये भारतीय संस्कृति है, भारतीय दर्शन है, जिसमें ये सारी बातें छिपी हुई हैं। एक मिनट का वीडियो है, देखिएगा अभी हमारी राष्ट्रपति जी क्या कहती हैं अपना अनुभव शेयर करते हुए।
आप जानते हैं मैं एक गांव से आती हूं, हरियाली, शुरू से ही मैं हरियाली से परिचित थी। मैं जो छोटी थी, मेरे पिताजी ने, क्योंकि हम लोगों के पास कोई साधन नहीं था, लकड़ी से हम खाना बनाते थे, सूखे लकड़ी पिता माता चुन के लाते थे, आके फिर उसको घर पे भी उसको काटते थे, जलाने लायक बनाते थे। मैं रोज देखती थी, मेरे मन में प्रश्न उठता था, ये तो लाते थे यहाँ पर, क्यों फिर ये लकड़ी को चोट देते थे? मैं पिताजी को पूछा, ये तो सूखी लकड़ी, इसको आप क्यों फिर चोट देने से पहले पिताजी उसको नमन करते थे? मैंने बोलते, सूखी लकड़ी, इसको नमन करने की क्या जरूरत है? उन्होंने बोले, ये अभी बूढ़ा हो गया, सूख गया, लेकिन जिंदगी भर ये हम लोगों को फल दिए हैं, फूल दिए हैं, हवा दिए हैं, पानी दिए हैं। आज भी ये सूखी लकड़ी हम लोगों के काम पे ही लग रहा है।
ये हमारी भारतीय संस्कृति है जो प्रकृति से प्रेम करना सिखाती है। सूखी लकड़ी से भी इतना प्यार है, उसको नमन कर रहे हैं कि सारी जिंदगी जिस वृक्ष ने हमें फल फूल दिया, हवा दिया, आज भी वो हमारे काम में आ रहा है। तो ये प्रकृति से प्रेम की संस्कृति हमारी है, और इसमें जो सृष्टि चक्र दिखाया गया है, आप इसमें देखें कि सतयुग और त्रेता युग में संपूर्ण सुखी समाज क्यों होता है। फूलई फलई सदा तरुकानन, रहाई एक संगज पंचानन, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। ये क्यों ऐसा था? क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों अपने सत्व प्रधान अवस्था में थे, दोनों में प्यार था। और जैसे जैसे प्यार खत्म होता है और जैसे जैसे हम जहर की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे हम विनाश की ओर बढ़ते हैं, दुखी और अशांत होते हैं। ये समझने की जरूरत है। और इसमें दिखाया गया है कि कैसे ये प्रकृति का विदोहन करने से हम विनाश के कगार पर पहुंच चुके हैं। वैज्ञानिकों ने इसको सिद्ध किया है, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं। आप देखेंगे तो सर जगदीश चंद्र बोस, लूथर बेरबक, टीसी सिंह, ये सारे वैज्ञानिक हैं। इन्होंने बताया है कि कैसे वनस्पतियां हमारी संवेदना को ग्रहण करती हैं, प्रकृति से प्यार को ग्रहण करती हैं। ये प्रयोग किया है टीसी सिंह साहब ने कि कैसे एक केले के वृक्ष को पाश्चात्य संगीत सुनाया गया, एक को भारतीय संगीत सुनाया गया, शास्त्रीय संगीत सुनाया गया, दोनों में फर्क देख लीजिए। तो बैलों के गले में घुंघरू हमारे यहाँ इसीलिए बांधते थे कि वाइब्रेशन धरती को मिले। रोपाई के समय लोकगीत इसीलिए गाते थे, ढोलक इसीलिए बजाते थे कि उसको फसल को वाइब्रेशन मिले। इसके पीछे साइंस था, केवल ये एक कर्मकांड या अपनी खुशी के लिए नहीं करते थे, खुशी तो थी ही लेकिन उसके पीछे साइंस था। और ये किसान पूरी तरह से आत्मनिर्भर था, अपना खाद, अपनी बीज, अपने संसाधन, आज सब कुछ दूसरे का हो गया है। समाज भी पूरी तरीके से जुड़ा हुआ था, गांव एक इंडस्ट्री थी, घर घर में कुटीर उद्योग था, संपूर्ण सुखी और समृद्ध समाज था, सभी संपन्न थे और भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। आज से 17वीं शताब्दी तक ये सारे प्रमाणिक इतिहास मिलते हैं जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि भारत का पूरे विश्व के जीडीपी में 50% से ज्यादा योगदान था। लेकिन लगातार ये गिरावट आती गई, हमारा जो मूल कृषि संस्कृति का तत्व था वो गिरता गया, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे कृषि पर बहुत ज्यादा सितम ढाए। और यहां पर मजबूरन जब भारत आजाद हुआ तो रासायनिक खेती चालू करनी पड़ी, इसके कारण मिट्टी बीमार हो गई, हमारे मित्र कीट खत्म होने लगे, हमारी पोषक फसलें समाप्त होने लगी और अन्न दूषित होने के कारण सभी रोगी होने लगे और मन दूषित होने के कारण कोर्ट कचहरी मुकदमों से भर गए। और ये संपूर्ण सुखी और शांत समाज जो था वो दुखी और अशांत हो गया। जीडीपी में भारत का कृषि का कंट्रीब्यूशन लगातार गिरता गया, जलवायु परिवर्तन होता गया, प्राकृतिक आपदाएं आने लगी, प्रकृति विनाश की ओर बढ़ी और आध्यात्मिकता के क्षरण के कारण पूरी तरीके से सुख और समृद्ध का लोप हो गया। किसान आर्थिक, सामाजिक और मानसिक तीनों रूप से कमजोर हो गया। आर्थिक रूप से कमजोर 4-5 हजार प्रति किसान परिवार आए हैं और सामाजिक रूप से ये स्थिति है कि 10 बीघे का काश्तकार किसान का बेटा वो चपरासी की नौकरी पसंद करेगा लेकिन खेती नहीं पसंद करेगा। समाज भी अपनी बेटी उसके साथ नहीं ब्याहेगा जो खेती कर रहा है, चपरासी की नौकरी कर रहा होगा तो बेटी को ब्याह देगा। 8,000 से अधिक किसान प्रतिवर्ष आत्महत्या कर रहे हैं। तो आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से पतन केवल इसीलिए हुआ कि हमने आध्यात्मिकता को छोड़ दिया, रासायनिक खेती को अपनाया, हिंसक बन गए और ये लगातार गिरावट की ओर बढ़ते गए। तो आज विचार ये है कि क्या ये संभव है, फिर से ये खेती हो सकती है? हम आपके सामने दिखाते हैं कि हाँ हो सकती है। जो प्राचीन किसान है, जो आधुनिक किसान है, दोनों में जो सकारात्मक पहलू है, दोनों के सामंजस्य से ये संभव है और धरती माँ के प्यार से संभव है। धरती माँ से हमें प्यार करना होगा, धरती माँ को जहर से बचाना होगा। इससे बहुत सुंदर एक गीत हरीश मोयल जी ने गाया है, कभी आपको समय हो तो डाउनलोड करके सुनिएगा, माँ को मुझे बचाना है। ये गीत हमारे दिल की आवाज है, हमने लिखा है। माँ धरती से है प्यार बहुत, अब माँ को मुझे बचाना है। हम धरती पुत्रों ने मिलकर के दिल में अपने ये ठाना है, तो आप इसको सुनिएगा। तो ये प्राकृतिक खेती पर बात हो रही है, लगातार प्रयास चल रहा है कि प्राकृतिक खेती बढ़े, लेकिन बढ़ क्यों नहीं रही है? पूरे देश में 2% लोग भी प्राकृतिक खेती नहीं कर रहे हैं। ये हमने पूरे इंडिया का आंकड़ा दिया है, कौन सा स्टेट कितने परसेंट प्राकृतिक खेती कर रहा है। तो इनका सबका समाधान ईश्वरी विश्वविद्यालय लेकर के आया है और उसका नाम है शाश्वत यौगिक खेती। ये पूरी तरीके से आध्यात्म पर आधारित है। इसमें योग शब्द इसलिए है कि योग माना होता है जोड़ या संबंध। तो प्रकृति और परमात्मा दोनों के साथ जुड़ करके, दोनों से प्यार करते हुए जो खेती करते हैं उसे हम कहते हैं योगिक खेती। हमने खास इसमें योग शब्द जोड़ा है, इसको प्राकृतिक खेती नहीं कहा, क्योंकि प्राकृतिक खेती में योग ही है, प्यार ही है परमात्मा से और प्रकृति से। तो उसी प्यार को हमें इसमें कैसे हमको बनाना है, प्राकृतिक तरीके से रासायनिक खेती छोड़ करके दसपर्णी अर्घ कैसे बनाना है, कैसे खेत की तैयारी करनी है, बीज संस्कार आगे आप सीखेंगे, मैं इसको विस्तार से नहीं बताऊंगा कि योगिक खेती क्या है, पानी के साथ योग का प्रयोग, खेत में शिव बाबा का झंडा फहराना, सह फसली खेती को अपनाना, सूक्ष्म पर्यावरण का निर्माण करना, प्रकृति का आभार करना, ये सारी विधियां इसमें समाहित हैं। यानी ये पूरी तरीके से प्राकृतिक खेती है जिससे गांव आध्यात्मिक और आत्मनिर्भर बन सकता है, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और मानसिक विकास संभव हो सकता है। आत्मनिर्भरता के लिए कृषि और उसके साथ कौशल विकास और जल और ऊर्जा पर आत्मनिर्भरता, ये आत्मनिर्भरता आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। सहयोग, एकता और सहभागिता, इससे सामाजिक विकास होगा। आध्यात्मिकता के लिए शांति और नैतिकता, इसके लिए मेडिटेशन, और ये मेडिटेशन योग, ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का सबसे प्रमुख विषय है जो यहाँ पर किसी भी सेवा केंद्र पर निःशुल्क सिखाया जाता है। और हमारे यहाँ से किसान आकर के सीख करके उत्तर प्रदेश से, ये मैं बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हमारे कृषि निदेशक डॉक्टर पंकज त्रिपाठी जी ने जब यहाँ आकर के देखा कि जो योगिक खेती है यही किसान को प्राकृतिक खेती को प्रेरित कर सकती है, यही किसान को आत्मनिर्भर और सशक्त बना सकती है, तो वहां जाकर के उन्होंने गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट किया और वहां से सरकारी खर्चे पर, सरकारी योजनाएं पहले से चल रही हैं, उन योजनाओं में लगातार किसान यहां पर सरकारी खर्चे पे आ रहे हैं, प्राकृतिक योगिक खेती सीख रहे हैं, अपना जीवन श्रेष्ठ बना रहे हैं, अपने आप को समृद्ध बना रहे हैं। तो जो भी अधिकारी यहां पर आए हुए हैं, जो भी वैज्ञानिक आए हुए हैं, एक बार इस पर आप जरूर विचार करना कि क्या हम लोगों को प्राकृतिक खेती को प्रेरित कर पा रहे हैं, क्या उनको समृद्ध बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं तो आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा अपने किसानों को यहां पर प्रशिक्षण के लिए भेज करके। हमने अनुभव किया है, अभी तक हमारे उत्तर प्रदेश से 8 ग्रुप आ चुके हैं, अधिकारियों के ग्रुप भी आए, कर्मचारियों के ग्रुप भी आए, किसानों के ग्रुप भी आए, और उनसे मैंने फीडबैक लिया, उनका अनुभव देखा। कई किसान योग सीख करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बना चुके हैं और प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं। मैं कपोल कल्पना की बात नहीं करता हूं, प्रैक्टिकल जो हो रहा है, जो मैंने देखा है। तो ये मैं इसको समाप्त करता हूं। किसान का जब लागत घटेगी, जीवाणु बढ़ेंगे, तो आर्थिक रूप से वो समृद्ध होगा। सामाजिक विकास जब मूलनिष्ठ किसान संगठन बनेंगे तो होगा। यहां पर एक परमात्मा की बात की जाती है, गॉड इज वन, तो समाज संगठित होता है। आज जाति धर्म के आधार पर समाज बट रहा है, उसे एक करने का काम ये ईश्वरी विश्वविद्यालय करता है। तो सामाजिक एकता का आधार है, मेडिटेशन मानसिक विकास का आधार है, और इससे किसान आर्थिक, सामाजिक और मानसिक तीनों रूप से सशक्त होता है और समृद्ध गांव जो बनता है, वो गांव जो हमारी परिकल्पना है वो गोकुल गांव की है, स्वर्णिम भारत की है। अंत में मैं ये दो लाइनें आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं, आप इस पे चिंतन करिएगा, मनन करिएगा। बहुत आजकल मैं जब से रिटायर हो गया हूं गीत बहुत लिखता हूं। थैंक यू भाई साहब, सरकार से रिटायर हुए हैं, यहां पर सेवा के लिए उपस्थित हैं, थैंक यू। सशक्त होंगे किसान भाई, योगिक कृषि अपनाएंगे। सशक्त होंगे किसान भाई, योगिक कृषि अपनाएंगे, गोकुल गांव बनाकर फिर से स्वर्णिम दुनिया लाएंगे। ओम शांति, थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद करें हम सभी आदरणीय ब्रह्मा कुमार
बद्री विशाल भाई जी का, जिन्होंने आध्यात्मिकता को जड़ कहा और समृद्धि और सशक्तिकरण को पूरा वृक्ष कहा है। उनके पूरे ही वक्तव्य का यही सार है कि जल को हम अब सभी पकड़ ले तो वृक्ष तो हमारे हाथ में है ही है। पुनः धन्यवाद करते हैं भाई साहब का हम सभी। अभी समय आ चुका है इस उद्घाटन विधि का, विधिवत दीप प्रज्वलन के द्वारा उद्घाटन करने का। दिया हम सभी को एक बहुत अच्छी शिक्षा देता है। दिया कहता है लिया नहीं लेकिन दिया। क्या दिया? विश्वास दिया, प्यार दिया, सहानुभूति दिया, करुणा और दया दिया। चलो आज हम सभी ऐसा दिया जलाएं जिनसे हमारा घर, हमारा मन और हमारा पूरा समाज प्रज्वलित हो जाए। ऐसी ही शुभ भावना के साथ सभी मंचासीन महानुभाव पधार रहे हैं दीप प्रज्वलन के लिए। जिन भी भाइयों और बहनों को आमंत्रित किया गया है दीप प्रज्वलन के लिए, वह सभी नीचे दीपक के स्टैंड रखे गए हैं। आप सभी नीचे जरूर पधारें और दीप प्रज्वलन विधि में अपने कदम आगे बढ़ाएं।
मिट्टी की खुशबू के संग मेहनत का गीत सुनाए, धरती माँ के आंचल को प्रेम से फिर सजाए। किसन है देश की शक्ति, गाओ हमारी पहचान, एकता और परिश्रम से रोशन होता सा दीप है, अंधेरा मिटा देता है। एक पवित्र संकल्प ही
नया युग बना देता है।
आओ मिलकर दीप जलाए, हर गांव को स्वर्ग बनाए, शाश्वत कीर्तन के संग मिलकर समृद्धि का गीत गाए। शांति पे
प्रज्वलन विधि द्वारा आज के कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन हुआ। अभी हम सभी के बीच में आज के इस उद्घाटन सत्र के मुख्य उद्घाटक बहुत ही सुंदर अपने विचार और भावनाओं के साथ पधारे हैं। गुजरात राज्य के, सॉरी भारत देश के अंदर जो आजकल हम सभी अनुभव कर रहे हैं कि दिन प्रतिदिन कृषि और ऋषि हम सभी के बीच में से लुप्त होते जा रहे हैं, परंतु आज आदरणीय भ्राता डॉक्टर सुरेश वी नाडा गौड़ा राज जी हम सभी को अपनी विचार प्रस्तुति से यह स्पष्ट करेंगे कि इस भारत देश की कृषि का क्या महत्व है और भारत देश के अंदर रहे हुए कृषकों के द्वारा किस प्रकार इस खेती को बहुत ही सुंदर मोड़ दिया जा सकता है। आदरणीय भ्राता सुरेश वी नागा गौड़ा राज जी, आप एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और समग्र भारत देश के अंदर जो हमारी दगध यूनिवर्सिटी है उसमें आप रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अनेक पदाधिकार आपको प्राप्त हैं, फिर भी आपकी सरलता और नम्रता हरेक के दिल को छूने वाली है। हम सभी सुनेंगे, प्रेरणाएं प्राप्त करेंगे आदरणीय डॉक्टर सुरेश वी नागा गौड़ा राज जी।
आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। मैं हिंदी समझ सकता हूँ, बात भी कर सकता हूँ, लेकिन उतना फ्लुएंट से बात नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आप सबको सबका सम्मति से मैं अंग्रेजी में बात करना चाहता हूँ। रेस्पेक्टेड डिग्निटरीज ऑन दी डेस, ब्रह्म कुमारी सरलाजी बेन, सिस्टर बी के सुदेश जी बेन, ब्रह्म कुमार मृत्युंजय जी, ब्रह्म कुमार बद्री विशाल जी, बी के राजू जी, श्री हितेश पटेल जी, ऑल अदर डिग्निटरीज ऑन द डेस एंड अवर फ्रेंड्स श्री विवेक जी एंड शेखर जी, रेस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, इनवाइटीज एंड ऑल्सो माई बिलव्ड वाइफ हु इज प्रेजेंट अमंग द ऑडियंस एंड आई ऑल्सो रिमेंबर ब्रह्म कुमारी जयंती अक्का जी। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड I consider myself to be most fortunate person to be part of this very important program, that is National Conference on Empowered Farmers and Prosperous Villages through Spirituality, a Holistic Framework for Sustainable Rural Transformation. As I have been already introduced to you all, presently I am working as a Vice Chancellor of a very unique and first of its kind university that has been established by the Government of Karnataka, that is Mahatma Gandhi Rural Development and Panchayat Raj University at Gadag near Hubli. It has been established with a keen initiation by then Honorable Rural Development Panchayat Raj Minister Sri H.K. Patil ji, with the support of then and present Chief Minister, and the university is being developed with the great support of the present Rural Development Panchayat Raj Minister. The university has been established realizing the fact that India is an agrarian country, India is a country which lives in villages, as Mahatma Gandhi ji has said, the soul of India is in villages. That without the development of the villages, without the prosperity in the villages, without empowering the farmers, as we all know, that almost about 70% of our people lives in villages, depends on agriculture and allied activities. So unless we bring qualitative change in the lives of the people who are residing and working in the villages, both socially, economically, it will be very difficult to achieve what we are, what we all are aspiring, desiring, or aiming to make India a Viksit Bharat, a developed nation. That is the desire of every one of us, that India should become a developed nation by 2047 on the occasion of completion of 100 years of our independence. Making India a Viksit Bharat, not making only few individuals richer. It is the development of each and every one. It is the development of each and every one. Dignitaries and participants, you will be stunned to know, as per World Inequality Report, 46% of Indian wealth and means of production is concentrated in the hands of only 1% of the people in India. And still further, it is very heartening to know that 26% of our national wealth is concentrated in the hands of only 100%. Only 100%. We all know who are those 100%. So, if rich become richer and the poor become poorer, if the gap between the rich and poor increases, it is not a sign of development of the nation. So we need to ensure the development of all the citizens of the country. We need to fulfill their minimum needs. Needs of good education, good health, hygienicity, good drinking water, making available good drinking water, and more particularly ensuring them or making them to be peaceful, live in harmony. That is what I am really grateful that Ishwari institution, organization is rendering its yeoman service to inject spirituality in the minds of each and every individual of this nation. And in fact, in order to reduce this gap or void between the rich and poor, we need to religiously implement the Sustainable Development Goals, which the United Nations Organization has adopted in 2015 with a mandate to implement them all in all the member nations of the United Nations Organization by 2030. Now we are already in 2026. We have to introspect ourselves to what extent we have been able to implement them. There are 17 Sustainable Development Goals, out of which at least 6 to 7 are directly related to empowering farmers, rural development. Be it either zero hunger, no poverty, then respect to the climate, protection of our fauna. So all these things which we have noted are required to be still realized. And since we are a rural development Panchayat Raj university, we often go to the villages. We find people still suffering from the lack of basic facilities such as pure drinking water, good connectivity. More particularly, the farmers grow the crops. Many a time it results in failure because of lack, failure of rainfall, or sometimes it may be because of excess rainfall. Even though the climate cooperates, nature cooperates, even though they grow the crops well, get good yield, then there will be a marketing problem. And they will have to sell their product at a throwaway price. And of course, government have been doing good, and it has introduced several schemes for protection of the farmers. But many a time, the policies of the governments are not reaching to the needy in fullest extent. And many a time, when the farmers grow a particular product in a huge quantity, the government makes a policy to purchase only small portion of that. Then again, it leads to the loss for the farmers, which results in lot of mental agony, distress, as a result of which farmer will not have any other alternative but to commit suicide. And as a result of which, as you all know, that in our country in the last one decade, about more than 1,12,000 farmers have committed suicide. And in 2023 itself, more than 12,000 farmers have committed suicide. So, already the previous speaker has highlighted some of the aspects. And our university, since it is a specialized university, we have introduced 10 post-graduation courses, 6 undergraduation courses, wherein we are providing experiential learning for the students, whatever the course it be it either MSc Food Science and Technology, we have Master of Computer Application, Bachelor of Computer Application, whatever it is, because technology is also required everywhere nowadays. Without technology, it is very difficult to function. So we have made agriculture and allied activities as one mandatory subject, and also rural development and Panchayat Raj. Every one of our students need to understand the various aspects of rural development, and also the Panchayat Raj system, which we have established over the country in a uniform form by 73rd amendment to the Indian Constitution, and we have given constitutional status to the Panchayat Raj system with an intention to ensure Mahatma Gandhi's vision of Gram Swaraj, that the villages should function as independent governments. They should not be governed by either the capital of the country or by capital of the state. So that is the main concept with which we have been training our students. And nowadays we all know that there is an unemployment in the country. It is estimated that more than 20% there is an unemployment. So we cannot expect the government to provide employment to everyone. And as it is, we know the employment in the government is very, very limited. Even in the private organizations, all put together is only 10 to 12%. Then rest of them have to fend for themselves. They have to be self-reliant, self-employed. So that's why we need to inject skills among our graduates. We need to provide them practical training. We need to provide them experiential learning, so that we need to make them entrepreneurs. So this is very much necessary, and our university is committed to produce such graduates who will not be job seekers but job providers. That is the significance of this university. So it will be very interesting for you if I share this information that we have MBA program in rural management and agribusiness management. We have MCom in cooperative and banking management. We have MSc in food science and technology. We have MSc skill development. So time is over. I will be completing very soon. So all these courses we have made it mandatory that all of them have to stay in village for 21 days, study the village conditions. They have to interact with the village people, understand the problems, and submit a report which we will make analysis. We will find out what are the problems of the villagers, then submit a report to the government, and we are finding solutions for the problems of the students. So that is how the university have been doing, and in fact I am really happy that I have been given an opportunity to come over here. It is not only ensuring social and economic prosperity of the people in the villages, they need to be spiritually also self-reliant, and they need to conduct their agriculture with more confidence, more courage, for which we need yoga, meditation. That is where there is a great role of Ishwari Vishwavidyalaya. So I am very happy to place before all the dignitaries here and all the concerned that our university is open to have MOU with Ishwari Vishwavidyalaya and to have and to organize, conduct various joint collaborative activities including research, extension activities, whereby we can ensure, we can empower our farmers and also ensure rural development with spirituality. So with these words, I am really grateful to the organizers for giving me an opportunity to come over here and to be part of this great movement, and thank you very much. Thank you.
बहुत सुंदर आपके विचार सराहनीय हैं, आपकी भावनाएं बेहतरीन हैं, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए हम यहाँ तक ही आपको सुन पाए हैं। हमारे सभी सम्माननीय वक्तागण से हमारा नम्र अनुरोध है कि कृपया समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए आप सभी अपना वक्तव्य देंगे तो यह प्रोग्राम समय पर हम संपन्न कर सकेंगे। अभी हम सभी के बीच में पधार रहे हैं आदरणीय भ्राता हितेंद्र भाई पटेल, आप चेयरमैन श्री गुजरात राज्य प्राकृतिक कृषि फेडरेशन और भारतीय जनता पार्टी के आप डिबेट वक्ता श्री हैं। सारे ही भारत देश में नहीं लेकिन चारों ओर विश्व में आज प्राकृतिक खेती के प्रति एक बहुत ही सुंदर क्रांति का उद्गम हुआ है जिसके आप जन प्रतिनिधि हैं आदरणीय हितेंद्र भाई जी।
ओम शांति। सशक्त किसान समृद्ध गांव अभियान ब्रह्मा कुमारी के ग्राम विकास प्रभाग की ओर से आज जो ये सेमिनार का आयोजन किया है, हमारे बीच उपस्थित मंचासीन सभी महानुभावे, सभी दिव्य ज्ञानी आत्माएं, पूरे देश से पधारे हुए हमारे कृषि प्रेमी, कृषिकार, कृषि वैज्ञानिक और कृषि के प्रति लगाव रखते हुए सभी दिव्य आत्माएं, माउंट आबू की इस पवित्र धरती पर उपस्थित होके मुझे दिव्य अनुभूति का एहसास हुआ है। कृषि करते करते, कृषि कराते कराते, प्राकृतिक कृषि के अभियान में काम करते करते बहुत सालों से करता था, लेकिन आज मैं सरला दीदी का, राजू भाई का, सुमन भाई का, हमारी जयश्री बहन, हमारे अशमुख भाई का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि काम बहुत किया, लेकिन इसमें दिव्य का साथ इस सभागार में उपस्थित रहने का मुझे मौका दिया। वैसे तो भी कहते हैं कि कभी दिव्य सभा होती है, सभा मंडप में जब दीदी जैसे पवित्र आत्माएं रहती है, संतों महापुरुषों की उपस्थिति रहती है, तो 33 कोटि देवता और बाबा का भी यहां उपस्थित आशीर्वाद के रूप में रहता है। और आज इस संस्थान ने आध्यात्मिकता का साथ, समाज नवरत्ना के काम के साथ, गांव में जाने का, कृषिकार के घर जाने का, उसके खेत तक जाने का जो अभियान लगाया है, मैं नतमस्तक इस ग्रामीण विकास विभाग और इसके सभी कार्यकर्ताओं को वंदन करता हूं। हमारी जो संस्कृति है, कृषि और ऋषि की संस्कृति है, हम बोलते तो थे लेकिन कृषि की संस्कृति वाले अलग काम करते थे, ऋषि संस्कृति वाले भी अलग काम करते थे। हमारे देश की धरोहर जो है वो भी हमारे संतों महापुरुषों के आधार पर बहुत टिकी हुई और बंधी हुई है। बहुत काम किया है देश को बनाने के लिए, और आज चलाने के लिए एक आंदोलन सरकार चला रही है जो उसका दायित्व है। अलग अलग योजनाओं के साथ समाज जीवन के लोगों का उसके जीवन में सुधार आए, अच्छी तरह से जी सके, इसके लिए सरकार काम कर रही है। उसको जो चाहिए वो देने का प्रयास कर रही है। उसको बहुत और अच्छी तरह से करने के लिए एक सहकारिता आंदोलन भी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अच्छी तरह से काम कर रहा है, और खास करके ग्रामीण विभाग में, कृषि विभाग में वो अपना दे रहे। संतों महापुरुषों अथवा आध्यात्मिक जो शक्ति है वो भी इसमें हाथ बटा रही है। लेकिन पिछले कई सालों से काम करते करते मैं कई अच्छे स्पिरिचुअल लीडर को भी मिला हूं। मैं कोई नाम नहीं देता हूं, लेकिन हमारी जो स्पिरिचुअल लीडरशिप है, आध्यात्मिक जो ताकतें हैं, वो शास्त्र, मंदिर और संत तक सीमित हो गई है। अपने मंदिर में, अपनी संस्था में बुला के सभी लोगों को प्रशस्तित करना, हमारी संस्कृति का ज्ञान देना, हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए लोगों को तैयार करना बहुत अच्छी तरह से करते हैं, और इतनी सारी बहुत समस्याओं के बीच भी हम टिक रहे हैं। बहुत सारी समस्याओं अंग्रेजों के बाद, आजादी के बाद भी हमारे सामने आई, लेकिन इस स्पिरिचुअल लीडर के साथ, उनके प्रयत्नों से हम टिक रहे हैं। और इसीलिए कभी कभी कोई कवि ने बोला है कि यूनान मिसर रोम सब बीत गए जहां से, यूनान मिसर रोम सब मिट गए जहां से, मगर फिर ही बाकी है नामो निशा हमारा। कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन दोरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। और ये सब होने के बावजूद भी हम बोलते हैं कि हम कृषि प्रधान देश है, 70% आबादी हमारी कृषि के ऊपर निर्भरित है। एक समय था हमारे जीडीपी में कृषि का बहुत बड़ा रोल था, आज जीडीपी में भी कम हो गए, नंबर भी 50% से कम हो गए हैं, और कृषि का जो हाल हवाल था वो जैसा आजादी के समय था उसके बाद में 10-20 साल तक जितना था ऐसा आज नहीं है। एक समय था कि गांव में कोई बेटी की, बेटे की शादी करती थे तो पूछते थे कि कितनी जमीन है तुम्हारे पास, कितनी गाय भैंसे है, कितनी खेती बाड़ी है, वो पूछते थे। और जिसकी ज्यादा खेती थी, ज्यादा गाय भैंस थी, जितना बड़ा उसकी गौशाला थी, उसके ऊपर अच्छे लोग उनके कैटेगरी के लोग के साथ शादी करते थे। एक समय था कि लोग बोलते थे कि उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी, लेकिन पिछले 20-25 सालों में ऐसा कुछ हो गया कि आज उत्तम नौकरी, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ खेती हो गई। कोई भी बाप अपने बेटे को किसानी में डालता नहीं है, डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर बनाना है,
कलेक्टर के बेटे को कलेक्टर बनाना है, एमएलए के बेटे को एमएलए बनाना है, लेकिन किसान अपने बेटे को किसानी में नहीं डालता। कुछ बात ऐसी हुई है कि यह सिचुएशन खड़ी हुई है। किसानी के बारे में ऐसा कहा जाता था कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया, वो भारत देश है हमारा। लेकिन आज किसानों की हालत इतनी अच्छी नहीं है जितनी बाकी सारे व्यवसाय वालों की है। दो तीन चार बातें, जिस तरह से किसानी में थोड़ा बदलाव आया, हमारी संस्कृति के साथ, हमारी प्रकृति के साथ हमने नाता तोड़ दिया, हम मॉडर्न होने लगे, मॉडर्नाइजेशन के साथ किसानी इनडायरेक्ट होने लगी, हमारा इन्वॉल्वमेंट जो था, जो भावनात्मक इन्वॉल्वमेंट था, वो कम हो गया। एक समय था कि किसान का बेटा कितना भी बिजी हो तो अपने खेत का दर्शन एक बार जरूर करता, जाने से पहले या लेट आवे तब भी एक बार वो अपने खेत पे नहीं जाता था तो उसको चैन नहीं पड़ता था। हर किसान, हर गांव वाला अपनी मां के ज्यादा अपनी गाय माता को और अपनी भूमि माता को पूजता था, इतना उसके साथ लगाव रहता था। आज पिछले 25-25 साल में इसमें बहुत बड़ा बदलाव आ गया। हम लोग प्राकृतिक कृषि फेडरेशन के, प्राकृतिक कृषि यूनिवर्सिटी से, प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड, ये सभी आयाम से गुजरात में बहुत काम कर रहे। एक्सटेंशन के प्रोग्राम कृषि यूनिवर्सिटी कर रही है, प्राकृतिक कृषि बोर्ड कर रहा है, हमारा जैसे बहुत सारी संस्थाएं भी कर रहे हैं, बहुत सारी स्पिरिचुअल संस्थाएं भी कर रही है। लेकिन मुझे आज मालूम हुआ कि हमारे में क्या कमी थी, इतना करने के बावजूद हम नहीं समझा पा रहे थे जो कर रहे थे वो इकोनॉमिकल कर रहे थे। वो भाव, ब्रह्मा ने सृष्टि का सर्जन किया तब किसानों को पूरी दुनिया का पेट भरने की जिम्मेवारी सौंपी थी, स्वयं परमात्मा ने सौंपा हुआ काम था, उसमें से हम खिसक गए और जहर खिलाने लगे, किसानी को अपने मूल तत्व से बहुत दूर लेके चले गए। और जिस तरह से सरकार ने भी पहली हरियाली क्रांति, दूसरी हरियाली क्रांति के समय बहुत सारे खाद, बहुत सारी दवाएं, हाइब्रिड बियारण देने लगे और तब से हमारी बेहाली शुरू हो गई। उस टाइम पे वो जरूरी था किसान को अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, देश को अपने जरूरी खाद और चावल की आपूर्ति के लिए ये जरूरी था। लेकिन यूनिवर्सिटी ने, सरकार ने कोई चौकस माप दिया था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पाने की हम व्यापारी बन गए और जो दवा डालनी थी, जो खाद डालना था, जैसे करना था वो भूल गए और इतना अतिरेक कर दिया कि आज हम जहर उगल गए। प्राकृतिक कृषि के इस अभियान में पूरे प्रदेश घूमते घूमते मैंने जो दो चार बात पाई है, हम क्यों इसमें सफल नहीं हो रहे, दो तीन बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इसमें एक बात का समाधान मेरे आज हो गया है यहां आके, कि अध्यात्म के साथ, योग के साथ अगर किसानी की जाए तो 50% समाधान हमारी समस्याओं का होने वाला है, मेरा पूरा भरोसा आज ये बन गया है। प्राकृतिक कृषि में भी और कृषि में भी दो तीन समस्याएं, जैसे भाई साहब ने बताया, दोनों वरिष्ठ कृषिकार और कृषि वैज्ञानिक भी है, अपने अपने प्रदेश के भी और पूरे राष्ट्र में भी सरकार ने जो किया है उसका आपके सामने रखा है, और फिर भी वो जो करना है वो नहीं हो रहा है, वो सही बात है। तो एक बात है ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, हम इतने एडवांस हो गए हैं कि जल संचय का काम हमने बंद कर दिया, वृक्षारोपण का काम हमने बंद कर दिया, पानी बचाने का और पेड़ लगाने का वो जो काम था, हमारी संस्कृति थी कि गांवों में, दूर दूर गांवों में जब अपने यहां प्रसंग आता था तो 10-15-20 झाड़ काट देते थे तो हमारा प्रसंग निकल जाता था, और 40 उगा देते थे, उसका कैलकुलेशन रहता, जैसे किसानी करते थे उसी क्रम में बॉर्डर पे हम इतने झाड़ लगाते थे, वो हमारी आय का दूसरा स्रोत बन गया। आज कोई किसान अपने बॉर्डर पे पेड़ नहीं लगाता है। और ग्रीन कवर जो गट कट कम हो गया है, ओजोन का लेयर जो टूटने वाला है, आज यहां आबू में 37-38 डिग्री टेम्परेचर, राजस्थान के चूरू वगैरह में 50 डिग्री क्रॉस कर गया है, गुजरात के कई जिलों में 45 तक आज पहुंच गई है। किसान ही ऐसी कहती है, बड़े बड़े वैज्ञानिक यहां बैठे हैं, तो 37 से ऊपर टेम्परेचर जाता है तो पोलिनेशन में उसमें तकलीफ पड़ती है, तो जो अनाज है उसका दाना भी छोटा हो जाता है और उसके अंदर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, तत्व है, पोषक तत्व, वो भी कम हो जाता है। आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 25% पूरे देश में कृषि की पैदावार कम होने लगी है और उसमें 25% उसमें जो तत्व है वो भी कम होने लगे। दूसरी बात, सामाजिक समस्या है हमारी, कृषि के प्रति हमारे बच्चों का लगाव कम हो रहा है, वो लोग नहीं चाहते हैं कि हम कृषि करें, क्योंकि हमारी बहनें जो है, हमारी सोशल जो समस्या है वो ये हो गई है कि अगर कोई कृषि करता है शादी में उसके बायोडाटा में वो कृषिकार लिखा जाता है तो बच्ची तो ठीक, इसकी मां मना कर देगी, मेरी बेटी कृषिकार के वहां नहीं जाएगी, मेरी बेटी गांव में नहीं जाएगी, मेरी बेटी गाय नहीं पालेगी, मेरी बेटी गाय का वो काम नहीं करेगी। और ये समस्या की वजह से भाई साहब ने बताया था कि अगर पांच दस बीघा जमीन है, पांच दस उसके पास गाय भैंस है, तो 3-4 हजार रुपया कमाना इसके लिए बिल्कुल सहज सरल बाबत है। वो 2-3 घंटे सुबह काम करेगा, 2-3 घंटे शाम को काम करेगा, अपना वो मालिक रहेगा और फिर भी 3-4 हजार रुपया वो कमा लेगा, लेकिन ये सोशल समस्या की वजह से आज उसको ये ठंडा खाना लेके फैक्ट्री में जाना पड़ता है, सुबह 8 बजे जाता है, रात 8 बजे वापिस आता है और 500 रुपया उसके मिलता है। ये सोशल समस्या हो गई है, सबको शहर में रहना है, सबको अलग रहना है और सबको किसानी नहीं करना है, और ये समस्या की वजह से किसान इनडायरेक्ट किसानी करता है, शहर में रहकर टेलीफोनिक खेती करता है और इसकी वजह से किसानी में वो कमी आई है। तीसरी बात यह हो गई कि जो लोग किसानी करते थे, बड़े किसान थे, तो खाद डालने में इतना डालने लगा। आपके बाजू में पालनपुर डीसा डिस्ट्रिक्ट है, पोटेटो का इतना बड़ा प्रोडक्शन हो रहा है, तो पहले किलो में डालते थे भाई साहब, अब थैली में डालते, एक हेक्टर पोटेटो के प्रोडक्शन के लिए वो आपको ये मानने में नहीं आएगा कि 20 थैली डीएपी, 10 थैली सल्फेट और 10 थैली पोटास लगा देते, जो 100 हेक्टर में जरूर पड़े इतना वो एक हेक्टर में लगा देते थे। सवाल ये हो गया कि इतना केमिकल, इतनी दवाई डालते जमीन ने जवाब दिया, इसका ऑर्गेनिक कार्बन बिल्कुल खत्म हो गया है, 2.2, 2.3, 2.4 हो गया है, जो 4 होना चाहिए। तो किसानी ने जवाब दे दिया, उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो किसान इसमें से उसकी आमदनी नहीं हो रही, उसके परिवार का पोषण नहीं हो रहा है और इसकी वजह से किसानी से लोग निकल रहे हैं। वो 2-3 बातें मैं आपके सामने रखी है, यहां बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है किसानों के लिए, गांवों को समृद्ध बनाने लिखिए, और आप सब दिव्य आत्माएं इस क्षेत्र में काम कर रहे, तो मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि जो भी हम अध्यात्म के साथ करने जा रहे हैं, मेरी ये 2 समस्या के साथ हम ये शपथ दिलाए कि भाई अगर हमारा बर्थडे है, अगर हमारी एनिवर्सरी है, अगर हमारे वहां एक दिव्य प्रसंग है, तो 5 पेड़ लगाने का संकल्प करें, केक काटने की हमारी संस्कृति नहीं, और 5 गाय पालने का आप करें, ऐसे संकल्प के साथ मुझे यहां आने का मौका मिला और ये दिव्य अनुभूति का एहसास हुआ। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने आप को क्या मेरे पास शब्द नहीं है, मैंने जो पाया है यहां सीखने आया हूं, तो आप सब लोगों का फिर से और ये परिवार का भी धन्यवाद करता हूं।
हम सभी ने सुने कितना हार्टली, हृदय से आदरणीय हितेश भाई जी ने हम सभी को आने वाले समय के लिए प्राकृतिक कृषि के प्रति प्रोत्साहित किया है। हम सभी तहे दिल से आपका धन्यवाद अभिनंदन करते हैं। अभी हम सभी के मध्य में आध्यात्म जगत की एक दैदीप्यमान हस्ती उपस्थित है। मैं आप सभी के सामने उस दिव्य हस्ती को प्रस्तुत करने जा रही हूँ, आदरणीय राजयोगिनी सरला दीदी जी। आप कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं। आपकी बहुत सारी मेहनत और उमंग के परिणाम स्वरूप पूरे ही भारत देश के अंदर यह यौगिक खेती का एक सकारात्मक आंदोलन चला है। आप मेहसाणा सब जोन की उपक्षेत्रीय संचालिका है, हम सभी के सामने अपनी प्रेरणाएं प्रस्तुत करेंगी आदरणीय राजयोगिनी सरला दीदी जी।
ओम शांति। आज के इस सुंदर संध्या में पवित्र प्रकंपनों के बीच शक्तिशाली वातावरण में उपस्थित आज के कार्यक्रम के आध्यात्मिकता द्वारा सशक्त किसान और समृद्ध गांव इस कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित मैं सर्वप्रथम उस प्रेरणा स्रोत, मूल्यों और गुणों के स्रोत प्रकृतिपति परमपिता परमात्मा का आवाहन करती हूं। साथ ही साथ आज के इस मंच की शोभा हम सबको प्रेरणा देने वाली और शक्ति प्रदान करने वाली परम श्रद्धे राजयोगिनी आदरणीय सुदेश दीदी जी, जिन्होंने अपने हर संकल्प और श्वास को विश्व कल्याण की सेवा में समर्पित किया है, ऐसी हम सब की प्रेरणा की मूर्ति है। साथ ही साथ आज के कार्यक्रम के उद्घाटक माननीय भ्राता डॉक्टर सुरेश वीनाडा गोरकर जी, कुलपति रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज यूनिवर्सिटी गदक, आप सारे भारतवर्ष के अंदर, कल हमारी आपके साथ बहुत अच्छी चर्चा हुई, आपने बताया कि सारे भारतवर्ष में ये एक ही विश्वविद्यालय है जहां पंचायत राज के ऊपर में बहुत सारी फैकल्टीज आपकी सेवारत हैं। और आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए परमात्मा पिता ने विशेष आपको निमित्त बनाया और आपके हस्तों के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभ उद्घाटन हुआ। साथ ही साथ वो दिव्य विभूति जिन्होंने परमात्मा पिता से जिन सिद्धियों को, उपलब्धियों को ईश्वरीय ज्ञान और योग के माध्यम से प्राप्त किया और हर हमेश ये उमंग और उत्साह रहता है कि मैं इन प्राप्त सिद्धियों को समाज में बांटूं, हर वर्ग के लिए, चाहे धर्म नेता हो, चाहे राजनेता हो अथवा अभिनेता हो, हमेशा ये संकल्प रहता है कि परमात्म संदेश, आध्यात्म ज्ञान इन आत्माओं को प्राप्त हो, ताकि भले VVIPs हैं, अति व्यस्त हैं, लेकिन उस अति व्यस्तता के अंदर मस्त रहने की विधि वो आध्यात्मिकता और राजयोग है, उसको ये लोग प्राप्त करें। बहुत दूर दूर जाकर दिल से आप उन सभी आत्माओं को निमंत्रण देते हैं और परमात्मा पिता के घर तक पहुंचते हैं और अनेक प्रकार की प्राप्तियां करके जाते हैं। ऐसी विशेष सेवा के निमित्त राजयोगी ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय भाई, जो हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं, साथ ही साथ जिन्होंने बहुत सुंदर रीति से विषय को स्पष्ट किया और जो आज की उस समस्याएं हैं उन बातों को हमारे बीच रखा। ऐसे हमारे अतिथि माननीय भ्राता हितेश भाई पटेल, अध्यक्ष गुजरात प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड गांधीनगर, साथ ही साथ राजयोगी ब्रह्मा कुमार बद्री विशाल भाई, आपके अंदर भी किसानों के लिए जो प्रेम है, क्योंकि उस जीवन को आपने खुद प्रैक्टिकल अपने में महसूस किया है, अनुभव किया है, और उस अनुभव के आधार से पुनः भारत विश्व गुरु बने, किसान सशक्त बने और देश समृद्ध बने, इस सेवा में आप रात दिन तत्पर हैं। अनेक स्थानों पर जाकर के प्रैक्टिकल अनुभव के आधार से आप किसानों में इस क्षेत्र की जागृति ला रहे हैं। ऐसे हमारे राजयोगी ब्रह्मा कुमार बद्री विशाल भाई, साथ ही साथ कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष, आप भी इस प्रभाग की सेवाओं में किसानों के मनोबल को बढ़ाने के लिए राज्यों की टेक्निक जो सकारात्मक चिंतन है वो प्रेरणा देकर के किसानों को चरित्रवान बनाने की विशेष सेवा में तत्पर ऐसे कर्मठ योगी राजयोगी ब्रह्मा कुमार राजू भाई, और मंच का सुंदर संचालन करने वाली राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी तृप्ति बहन, जो कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, साथ ही साथ हमारे दूसरे नेशनल कोऑर्डिनेटर राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुनंदा बहन, सुमंत भाई, और सभा में उपस्थित आप सभी भारत के विभिन्न प्रांतों से पधारे हुए, चाहे कृषि अधिकारी हैं, चाहे कृषि वैज्ञानिक हैं, चाहे कृषि क्षेत्र से संबंधित सेवाओं में तत्पर हैं, अपना अमूल्य समय निकाल करके इस सभा में पहुंचे हैं। आप सभी जिस एक विषय के अंतर्गत यहां पहुंचे हैं, बहुत सुंदर विषय है और वर्तमान समय इसकी आवश्यकता है। किसानों में आध्यात्मिकता, जैसा कि हितेश भाई ने भी बताया, बद्री विशाल भाई ने भी बताया कि आज किसानों की उन्नति के लिए चाहे सरकार है, चाहे एनजीओज हैं, बहुत सारे लोग जिन्हों का ये ध्यान है कि हमारे किसान सशक्त बने, भारत पुनः प्राकृतिक खेती करे, तो बहुत सारी सेवाएं, बहुत सारी योजनाएं किसानों के हित में आज जारी की गई हैं। यूनिवर्सिटीज, ताकि उन्हों को इसका एजुकेशन मिले, नेचुरल फार्मिंग यूनिवर्सिटीज बनी है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी ये एक संकल्प है कि भारत पुनः विश्व गुरु बने। यहाँ जो हमारी प्राकृतिक खेती थी, नेचुरल फार्मिंग थी, पुनः उस कृषि पद्धति की स्थापना हो। इन सभी संकल्पों को लेकर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग इस सेवा में रत है। हमने इस चीज को महसूस किया, आप सब भी इस चीज को महसूस करते होंगे, इतने सारे प्रयत्न सरकारों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा करने के पश्चात भी आज का जो किसान है, क्या हम उसको खुशहाल देख सकते हैं, कह सकते हैं, कह सकते हैं हमारा देश का किसान खुशहाल है? जो समझते हैं हाँ है, जरा हाथ खड़ा करेंगे, नहीं है। डिफेंस के बाद सबसे अधिक धनराशि यदि खर्च की जा रही है तो किस पर की जा रही है? कृषि के क्षेत्र में, किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए। तो ये सब करने के बावजूद भी जब हम परिणाम की तरफ नहीं पहुंचे, प्रभाग ने ये सर्वे किया कि इसकी जो विलुप्त कड़ी है वो है आध्यात्मिकता, जिसको हमारे हितेश भाई ने भी बहुत सुंदर शब्दों में हमारे सामने व्यक्त किया। क्योंकि जब तक इस देश का किसान सशक्त नहीं बनेगा, तब तक हमारे गांव वो स्वनिर्भर नहीं होंगे। और किसानों के सशक्तिकरण के लिए आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। आध्यात्मिकता क्या है? कोई मंत्र जाप, कर्मकांड, प्राणायाम नहीं। आध्यात्मिकता सिखाती है आप अपने को पहचानो, आत्मचिंतन। और जब आत्म ज्योति जागृत होती है तो किसान की अथवा व्यक्ति की जो सुषुप्त शक्तियां हैं वो जागृत होती हैं। किसान देश की वो हस्ती है। अगर हमें इस भारत को विश्व गुरु बनाना है तो उसके लिए पहले किसानों का सशक्तिकरण चाहिए। क्योंकि किसानों के द्वारा कृषि और कृषि का जो उत्पादन है, हम कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन होता है। तो बीज कहां से पड़ेगा? मन को सशक्त बनाने का उसका मूल श्रेय वो किसानों पर है। जब वो सात्विक और पौष्टिक अन्न का उत्पादन करेंगे तो खाने वाले व्यक्ति के अंदर भी सकारात्मक विचार पैदा होंगे। आज का जो अन्न हम उत्पादन कर रहे हैं, मैं हमेशा इस बात को कहती भी हूं, मारो 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 से करते हैं। बीज में दवा डालो, खेती में दवा डालो, उसके बाद केमिकल्स छिटको, किस लिए? मारो। अब जब वो अन्न समाज के लोग खाते हैं तो उनके अंदर में भी हिंसात्मक वृत्ति पैदा हुई और देश में हिंसा बढ़ रही है। तब हम अपने किसानों को इस आध्यात्मिकता के माध्यम से उनके मनोबल को मजबूत बनाएं, उनके चरित्र को श्रेष्ठ बनाएं, तो उनके द्वारा उत्पादित अन्न वो शक्तिशाली और पौष्टिक होगा। दूसरा, जब उनके जीवन में वैल्यूज आती हैं, गुण आ जाते हैं, तब उनका आंतरिक परिवर्तन आता है, जिससे परिवार की समस्याएं, समाज की समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, उन सभी समस्याओं का किसान सामना कर सकते हैं। तो अध्यात्म के द्वारा उनके मनोबल को मजबूत बनाना, उनके जीवन को चरित्रवान बनाना, तब हम जो हमारे देश की आज ये समस्या है उसका हम समाधान कर सकेंगे। तो इस विद्यालय का, इस प्रभाग का ये लक्ष्य है। आप सभी भी यहाँ पहुंचे हैं तो हम केवल 3 दिन में बहुत कुछ कार्य करेंगे कि मिलकर के अपने किसानों के सशक्तिकरण के लिए ऐसी योजना बनाएं ताकि वो चरित्रवान बने। इतने अच्छे अच्छे वक्ता यहाँ मंच पर भी हैं, सभा में भी उपस्थित हैं। तो मेरी आज के इस कार्यक्रम के लिए यही शुभ प्रेरणा है कि हम अपने किसानों को सशक्त बना करके अपने गांव को स्वनिर्भर बनाएंगे। ऐसी श्रेष्ठ शुभ प्रेरणाओं के साथ ओम शांति।
बहुत ही सुंदर रूहानियत से आध्यात्मिक विचार हम सभी के सामने आदरणीय सरला दीदी जी ने रखे। हम दीदी जी का तहे दिल से अभिनंदन आभार करते हैं। अब समय आ चुका है आशीर्वाद और दुआओं से अपनी झोली को भरने का। हम सभी के बीच में उपस्थित हैं परम आदरणीय राजयोगिनी सुदेश दीदी जी, एक ऐसा व्यक्तित्व कि जिसके चेहरे पर
निर्मल स्मित है, एक ऐसा भावनात्मक जीवन कि जिसके अंदर मूल्य चरितार्थ है। आदरणीय सुदेश दीदी जी, अंतरराष्ट्रीय संस्था ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के संयुक्त मुख्य प्रशासिका है, आपने 100 से भी अधिक देशों के अंदर ईश्वरीय सेवार्थ यात्राएं की हैं। अभी जहां हम बैठकर के सुकून ले रहे हैं, इतना सुंदर यह ज्ञान सरोवर परिसर है, उसके आप डायरेक्टर हैं। यूरोपीय देशों में भी जहां जहां ब्रह्मा कुमारी संस्था के केंद्र चल रहे हैं, उसके भी आप डायरेक्टर हैं। हम सभी को आशीर्वाद से भरपूर करेंगे परम आदरणीय सुदेश दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम प्रेम, ओम प्रेम, ओम आनंद। मंच पर विराजमान मेरे अति स्नेही बहने और भाई, भाई या बहने, मैं एक एक के नाम की, एक एक की विशेषता की माला अगर जपूं तो टाइम तो चला जाएगा। आपने हर एक की विशेषता अपनी सल्ला दीदी जी द्वारा संक्षेप में वर्णन की हुई सुनी, तो मैं अपने इन सभी हीरों के हार को और सामने मेरे बैठे हुए मेरे भाई और बहने चैतन्य सितारों को, परमपिता परमात्मा के अति स्नेही बच्चों को देख आज के इस प्रोग्राम में आप तो उपस्थित हैं, तो आशीर्वाद तो पिता परमात्मा की है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो जितना महत्व हम महिमा परमपिता परमात्मा की गाते हैं और परमात्मा की महिमा को अथवा कर्तव्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए, उतना ही महत्व प्रकृति का कहें अथवा धरती माँ का कहें, क्योंकि 5 तत्वों में से पहला तत्व प्रकृति का धरती है और धरती को माँ कहा जाता है। माँ का काम है पालन करना। तो वास्तव में हम सब खेती करने वाले किसान, कृषि करने वाले, वो एक व्यवसाय अथवा एक कार्य हुआ, परंतु आध्यात्मिक तक की दृष्टि से देखें, आध्यात्मिक तक के आधार से हम देखें तो हम सब किसान हैं, चाहे नर चाहे नारी। हम कर्म क्षेत्र पर आए हैं, कर्म इंद्रियों द्वारा जैसे धरती माता थोड़े से बीज डालो कितने फल देती है और वैल्यू बढ़ती है, धरती का ही आधार है, जल को भी लेने देने वाली संभालने वाली धरती माँ है, तो फल को भी देने वाली धरती माँ है। तो बीज बड़े पड़े हुए हों एक थैली में, 5 साल आप पोटेंशियल्स बीज फुल ऑफ अप क्वालिटी एक बैग में रखते हुए या 15 साल सेफ रखें, वैल्यू नहीं बढ़ेगी, वैल्यू उतनी रहेगी, परंतु उसमें से सिर्फ 5 बीज आप धरती पर लगाएं, उनको अच्छी तरह से जल दें, वातावरण दें, उनका उसके लिए अटेंशन दें, केयर करें, तो वो बीज एक पेड़ से जितने फल, हजारों फल तो मिलेंगे ही, परंतु एक फल की वैल्यू वो 5020 से ज्यादा है, 520 से ज्यादा है। कारण क्या है कि धरती पर आने से ही वो जब तक अपनी पोटेंशियल को एक्सप्रेस नहीं किया, वैल्यू नहीं बढ़ती है। तो आध्यात्मिकता क्या है? परमपिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे तुमको ये कर्म क्षेत्र में कर्म इंद्रियां किस लिए मिली है? हम सब आत्माएं कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के लिए आए हैं, और उसमें जैसे किसान को कृषि का ज्ञान है, अनुभव है, भावना है, इच्छा है, परंतु आज सशक्त करने की हम बात कहते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तन से सशक्त, मन से शक्तिशाली, आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न तथा अपने दिव्य संस्कारों से संपन्न, उनके चरित्र निर्माण में आध्यात्मिकता का बहुत महत्व है। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे जैसे खेती करते हो, कहा भी जाता है, वास्तव में देखा जाए तो राजाओं को भी खेती करते दिखाए। श्री दशरथ जी की कहानी ने, राजा जनक की कहानी में सीता जी कर्म क्षेत्र पर आने वाली एक सम, जो भी हमारे शास्त्रों में कहानियां हैं वो सिंबॉलिक है। खेती की तो जनक की बेटी जानकी, यानी कर्म क्षेत्रों के आधार पर ही, कर्म करने के आधार पर ही हम आत्माएं एक क्षेत्र में अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकती हैं। परंतु कर्म करने का ज्ञान चाहिए, और वो ज्ञान है जैसे अभी आपने सुना, आध्यात्मिक ज्ञान। चाहे हम कोई फिलॉसफी पढ़ रहे हैं या कोई अदर सब्जेक्ट, दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, वो आवश्यक है व्यवहार के लिए, परंतु जीवन को चलाने के लिए तो भोजन चाहिए, जल चाहिए, फल चाहिए। उसके लिए कृषि अति आवश्यक है, अथवा ये कहें कि खेती आवश्यक है, परंतु कर्मों की खेती का आधार, कर्मों की खेती के आधार पर ही। यदि हमारे जीवन में गुण श्रेष्ठ है, हमारे अंदर स्नेह का जल है, हमारी आत्मा परमपिता परमात्मा से सूर्य समान शक्ति लेकर अपने स्नेही स्नेही साथियों को, परिवार को वो शक्ति देती है, और आत्मिक भाव से खेती करते हुए परमात्मा की याद में कर्म करती है, तो पक्की बात है थकावट कभी नहीं होती है, क्योंकि मौज से काम करते हैं। थकावट तब होती है जब मन में उदासी होती है, कमजोरी तब आती है जब उत्साह नहीं है, अपने में विश्वास नहीं है। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं, दोनों तरह की खेती करो, शरीर को चलाने के लिए वो खेती आवश्यक है, और हमारा भारत सशक्त है एक्चुअली, अभी वो समय नहीं रहा जो हमको विदेश से अनाज मंगाना पड़े। हमारे भारत ने अपनी भारत भूमि की पालना के लिए हमारे किसानों ने प्रैक्टिकल में प्रूफ दिखाया है, परंतु उसमें अभी नेचुरल खेती हो, आध्यात्मिकता भरी हो, प्राकृतिक प्रयोग से हो, तो उसके साथ साथ हमारी जो नेचर है, यानी प्राकृतिक साधनों से खेती स्वास्थ्य देने वाली, स्वास्थ्य वर्धक तब बन सकती है जब हम स्व स्थिति में स्थित है। और स्व स्थिति का मतलब ही ये है कि आत्मा अपने को आत्मा समझकर इन कर्म इंद्रियों का मालक भी समझे, पालक भी समझे और बाकी सब आत्मा को स्नेह और सहयोग देने वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले वेले। तो परमपिता परमात्मा आत्मा को स्मृति दिलाते हैं कि पहले 5 बीज को आप बोओ, वो है ज्ञान, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ये सत्य गुण हैं। सत्यता प्रेम से अहिंसा जागृत होती है, अहिंसा का बल मिलता है और डबल अहिंसक बनते हैं, स्वयं को खुशी मिलती है और सच्चाई से सफलता मिलती है और खुशी होती है कि जहाँ सत्यता है वहाँ निर्भयता है, जहाँ प्रेम है वहाँ पालना स्वाभाविक रीति से थोड़े में भी बहुत बल भरा हुआ होता है। तो हम अपने आप पर कृपा करें, आशीर्वाद मांगने से पहले हम अपने आप पर कृपा करें कि हम अपने आप को आत्मिक बल से पावरफुल बनाएं और आत्मा का संबंध परमपिता परमात्मा से जोड़ें, क्योंकि आप परमपिता परमात्मा स्वयं श्रेष्ठ कर्मों की खेती करने की शिक्षा दे रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, जिससे परिवार की पालना हो, संसार की पालना हो और व्यवहार ऐसा सुंदर बने जो ये भारत फिर से वही स्वर्ग भूमि सुख धाम बन जावे। तो मन को ऐसा सुंदर बगीचा बनाए, उसमें दिव्य गुणों के फूल रखे अथवा ईश्वरीय मन बनाए, मंदिर बनाए जिसमें दिव्य गुणों की मूर्ति रहे। तो रोज जो भी कार्य करने के लिए हम जाएं तो उनसे वो दिव्य गुणों की शक्ति भरकर अथवा ये कहें शुभ भावना और शुभकामना भरकर जाएंगे तो हम ना खुद सशक्त होंगे, जो हमारे द्वारा किए गए खेती से अथवा कर्म से जो भी फल निकलेगा वो प्रसाद की तरह होगा और प्रसाद थोड़ा भी खाओ तो शक्ति देने वाला होता है। तो हमारे किसान इतने सशक्त हो जाए, जो थोड़ा भी जो बोए वो प्रसाद की तरह हो, प्रभु की महिमा का बल इतना भरा हुआ हो जो हर बात में हरियाली खुशहाली भए। तो ऐसा देश भारत विश्व का विश्व प्रधान सत्व प्रधान बनने वाला भारत, इसी भारत भूमि पर स्वर्ग और सुख धाम था जहाँ पशु पक्षी मनुष्यात्माएं सदा ही स्वस्थ रही और एकता में रही, अहिंसक रही। इसीलिए देवताओं को देवताएं और उनके जो जो सवारी है वो विरोधी पक्षी होते भी मिलकर के रहते हैं। गरुड़ जी विष्णु जी की सवारी गरुड़ है और शंकर जी के गले में सांप है। अभी वो तो सांप और वो खाते हैं। एक मिसाल देती हूँ, तो जितने भी देवताएं हैं माँ उनको भाव ये दिखाया है कि जब इतनी अहिंसक थी सृष्टि, उसका बल था आध्यात्मिकता, पवित्रता और दिव्यता, और ये भाव कि हम परिता परमात्मा की संतान है तो हमारा फर्ज है एक दो को स्नेह सहयोग और सद्भावना से पालना करना श्रेष्ठ कर्म के बल से। समय की सीमा होते हुए मैं इतना ही कहकर समाप्त करूंगी। ओम शांति।
खूब 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 अभिनंदन दीदी जी, आपने तो सारे विश्व के हर इंसान को आज किसान बना दिया। कितना सुंदर प्रेरणादायी हम सभी के प्रति बोल रखे कि कर्मों की खेती तो हर इंसान कर रहा है और कौन से बीज डालने हैं उस खेत में, वो आध्यात्मिकता से आपने हम सबके सामने प्रस्तुत किया। आपका पुनः धन्यवाद अभिनंदन करते हैं। आज के इस उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष स्थान पर विराजमान है परम आदरणीय राजयोगी मृत्युंजय भाई जी।
जिसकी वाणी में ओज है, जिनके विचारों में सकारात्मकता है और जिनकी हर सेवाओं के अंदर कुछ नवीनता है, ऐसा आध्यात्मिक व्यक्तित्व आज हम सभी के बीच में है। आप विश्वव्यापी ब्रह्मा कुमारी संस्था के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं, एजुकेशन विंग के आप वाइस चेयरपर्सन हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था में हो रही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के अंदर आपने सफल नेतृत्व प्रदान किया है। सदा ईश्वरीय सेवाओं में अपना समय, श्वास, शक्ति को समर्पण रूप से देने वाले आध्यात्मिक प्रतिनिधि आदरणीय मृत्युंजय भाई जी अपना अध्यक्षीय उद्बोधन हम सभी के सामने रखेंगे। आदरणीय भ्राता मृत्युंजय भाई जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कृषि प्रभाग से संबंधित विद्वज्जन, ऋषिगण, विज्ञानी लोग, कृषिक लोग, आप सभी स्वयं प्रेमी, प्रभु प्रेमी, प्रकृति प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी, देश प्रेमी, विश्व प्रेमी, जहाँ प्रेम है तो वहाँ क्या होना चाहिए? आप सभी प्रेम करते हैं? स्वयं प्रेमी, प्रभु प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी, प्रकृति प्रेमी और विश्व प्रेमी, जहाँ प्रेम है वह अच्छी चीज निकलता है, निकलता है ना? ऐसे विशेष करके इस समारोह के उद्घाटन किए हुए आदरणीय भ्राता सुरेश नारागौड़ जी, आपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय को अपने साथ जोड़ने का MOU करने का आह्वान किया है। हम बहुत विनम्रता के साथ आपको आश्वासन दिलाता हूँ, हम आपके साथ मिलकर के भी इस कृषि क्षेत्र में, पंचायत राज्य के क्षेत्र में सेवा देंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कृषि प्रभाग की अध्यक्षता हमारे सरला दीदी ने बहुत सुंदर, सरल और स्पष्ट रीति से हम सबको एक विचारधारा हमारे सम्मुख में रखा। इसके लिए आपको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, प्रभाग की सभी भाई बहनों को भी बधाई देता हूँ। हमारा सुदेश दीदी जी, वो है ही सुदेश, सुदर्शन चक्र घुमाने वाले, ज्ञान के चक्कर घुमाने वाले, परदर्शन से मुक्त करने वाले, ऐसे सुदेश दीदी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। और भ्राता हितेश भाई पटेल, इन्होंने बहुत हितनुड़ी हम सबको दिया है, प्रकृति का, पर्यावरण का और किसानों का क्या करना है, एक लक्ष्य इन्होंने निर्धारित करके स्पष्टीकरण दिया। इसके लिए आपको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद। हमारा राजू भाई, हम सबको इस क्षेत्र में क्या हमारा लक्ष्य होना चाहिए इसका स्पष्टीकरण किया, इसके लिए आपको भी मैं बधाई देता हूँ। और साथ में भावेश भाई, आपको भी बहुत विज्ञान की एग्जाम्पल दे करके इस समय की परिस्थिति को बारे में स्पष्टीकरण किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारा कृति बहन, बहुत सुंदर रीति से इस समारोह को कंडक्ट किया, इसके लिए भी बधाई देता हूँ। हम सभी एक बहुत अच्छे काम करते हैं, एक एक छोटे छोटे गलती भी करते हैं। हमारा उद्देश्य है, मिसाल के तौर पर छोटा सा दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का उद्घाटन करते हैं, अनाउंस करते, परंतु मोमबत्ती जला करके करते हैं। क्यों? मोमबत्ती को जल्दी जला सकते हैं, बुझा सकते हैं, दीप को जल्दी बुझा नहीं सकते। इसके लिए हमारा कृषि और ऋषि परंपरा बहुत दीर्घ समय तक चलते आए, 5000 वर्ष तक। अभी हमने वो बात को भूल गया है, इसके लिए कोई ना कोई भूल गया। इन्होंने सब्जेक्ट जो रखा है बहुत सुंदर सब्जेक्ट है, आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा कृषि का सशक्तिकरण और देश का प्रगति प्रोग्रेस डेवलपमेंट इस विषय रखा है। ये वास्तव में आत्मा का विकास से परिवार का विकास हो सकता है, परिवार के विकास से समाज का, समाज से देश के विकास हो सकता है, परंतु आत्मा का विकास होने की बजाय क्या हो रहा है आप सभी जानते हैं। इधर कौन किस किस को क्रोध नहीं आते हाथ खड़ा करे, एक भी नहीं है। क्रोध क्रोध अपनी मन से, अपनी संकल्प से, अपनी भावना से, अपनी गलती से क्रोध हम करते हैं तब तो सबसे पहला हमारा चेहरा खराब होता है, हमारा अंग खराब होता है, हमारा भावना खराब होता है, हमारा संबंध खराब होता है नहीं होता है, हमें करेक्ट होता है। तब किसकी चेहरा खराब होता है, सबसे पहले अपना ही चेहरा खराब होता है। क्यों? हमारा मन में, हमारे विचार को, हमारे बुद्धि में कोई अच्छे संस्कार नहीं डाला, अच्छे विचार नहीं डाला, अच्छी बातों को भूल गया, परमात्मा की शिक्षा को भूल गया, स्वयं को भूल गया, हमारा स्वदेश को भूल गया, परंधाम को भूल गया, हमारा कर्तव्य को भूल गया, पर चिंतन का एक कोई ना कोई अंश हमारे बुद्धि में प्रवेश होता है, वह रख देते हैं, वह याद करता है, तब मनुष्य के तरह क्रोध ईर्ष्या द्वेष नफरत आदि आदि आते हैं। ऐसी धरती को धरती माँ कहते हैं, अभी तो उसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे भाषण हमने सुना। धरती माँ को हम क्या डालते हैं? पॉइजन डालते हैं, मेडिसिन के रूप में अधिक फसल निकालने के दृष्टिकोण से पॉइजन डालते हैं। उसका परिणाम क्या हो रहा है? हेल्थ भी नहीं, वेल्थ भी नहीं, हैप्पीनेस भी नहीं, बीमारी बहुत बढ़ते जा रहे, बढ़ते रहे। गांव गांव में भी हॉस्पिटल बनाओ, गली गली में हॉस्पिटल दवाखाने बनाओ, गली गली में क्राइम हो रहा है इसके लिए पुलिस स्टेशन बनाओ, और हर प्रांत में कोर्ट बनाओ, कचहरी बनाओ। क्यों? हम अच्छे इंसान को नहीं बनाया, अच्छे आत्मा को नहीं बनाया, पवित्र आत्मा को नहीं बनाया, ये बनाने में कहीं ना कहीं विफल हो चुके हैं। इसके लिए एक नया शिक्षा चाहिए, नया विद्या चाहिए, नया विधि चाहिए, नया प्रयोगशाला चाहिए। वो प्रयोगशाला बाबा कहते हैं स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन, आत्म परिवर्तन से युग परिवर्तन हो सकता है। इसके लिए आत्मा में परिवर्तन के लिए क्या चाहिए? आध्यात्मिक शिक्षा चाहिए। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा आदि मध्य अंत क्या, मेरा पिता कौन है, उसको वो संबंध क्या था, इस बातों को जानकारी मिलता है तो ऑटोमेटिकली परिवर्तन का प्रक्रिया प्रारंभ होता है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इधर आते हैं तो वो अनुभव करते हैं। मैं 1968 में प्रथम बार बेंगलोर में ज्ञान प्राप्त हुआ, तब से लेकर के हम गॉडली स्टूडेंट है। मुझे एक प्रसंग याद आता है, इधर इस सभा में इसी हॉल में करीब 30-40 वाइस चांसलर, करीब हजारों प्रोफेसर आए हुए थे। उन दिनों में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जी आए थे। जैसे भाई साहब ने कहा ना, हम हिंदुस्तान में हमारे एक ही कृषि और पंचायत राज का यूनिवर्सिटी बोला, उन्होंने उस समय बोला वी हैव गॉट ए नेशनल यूनिवर्सिटी, रीजनल यूनिवर्सिटी, लैंग्वेज यूनिवर्सिटी और प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एंड म्यूजिक यूनिवर्सिटी, आजकल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। देयर इज ओनली वन यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी, दैट इज स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, दैट इज ईयर ईयर ईयर। ये बात उन्होंने कहा था, क्योंकि सारे विश्व में एक ही यूनिवर्सिटी है, एक ही यूनिवर्सिटी। आज सारे विश्व के लोग इधर आते हैं, यूनाइटेड नेशंस में भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय सहयोग देते हैं, और विश्व को लक्ष्य है इस विश्व को एक सुंदर विश्व बनाने के, पवित्र विश्व बनाने के लिए। पवित्र आत्मा बनाएंगे तो विश्व ऑटोमेटिकली बनेगा। उस बात को लेकर के इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय अनेक विंग्स के माध्यम द्वारा, अनेक ब्रांचेस के माध्यम द्वारा उन आत्मा तक पहुंचने के परिश्रम करते हैं। आप सभी ने यहाँ आकर के इस बात को अपने अंकों से देखा, अपने मन से देखा, अपने दिल से स्वीकार किया, अपने मुख से वर्णन करेंगे। जो अच्छी चीज स्वीकार करते हैं, इसको वर्णन करने से, दूसरों को बांटने से क्या होता है? वृद्धि होता है, समृद्धि होता है, इसमें समरसता आता है, इसमें म्यूजिक निकलता है, जीवन एक सुंदर बनता है। आप धरती में बीज बोते हैं, उसमें चार मास में, तीन मास से लेकर के चार मास, गेहूं का, चावल का, कोई भी, उसमें एक बीज से कितने बीज निकलता है? आप सभी ऋषि कृषि का है, लगभग मिनिमम मान के चलो चार मास में अंतराल में एक बीज से 100 बीज निकल सकते। एक बीज 100 बीज में रिटर्न करता है, एक इंसान कितने दुनिया को देता है? सदैव लेता है लेने के सोचता है, देने का सोचना कम है, और देने के नाम से लेता है। इसके लिए हमने क्या बनाया, इंसान को देवता बनाने के बजाय लेवता बना दिया, कहीं भी जाओ लेवता। इसके लिए ऐसी एक दुनिया बनाया, इसके लिए इसको घोर कलयुग कहते हैं। ऐसी कलयुग को सत्य रूप में परिवर्तन करने के लिए सत्यम शिवम सुंदरम को जानना चाहिए और सच्ची योग तो अनुभव करना चाहिए और सच्ची राजयोग का अभ्यास करेंगे। इसके लिए जैसे हमारे भ्राता जी सुरेश नाडा गौड़ा, उसका नाम है नाडा गौड़ा, नाडा मीन्स एरिया, प्रांत, एक प्रांत का, गौड़ा मीन्स जैसे गुजरात में पटेल कहते हैं ना, ऐसे कर्नाटक में गौड़ा बोलते हैं, माने रूलर, एक कंट्रोलर, ए ऑर्गेनाइजर, मोटिवेटर। अच्छा, ऐसे ही आप सभी एक एक व्यक्ति, इधर भले थोड़ा कम लोग हैं, परिवर्तन होकर के जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर आने के टाइम में 3000 लोगों को ले आ सकते नहीं आ सकते, और 3000 तो 30000 तक जाएगा, 30000, क्योंकि हमारा पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान प्राप्त हुआ उसमें अकेले निकला था। अभी कारवान कितने हो गया, अभी लगभग 1 मिलियन सोल्स अर्थात 10000 लोग इस ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए, और अधिक से अधिक है 10 लाख, सारी मेरे मैथमेटिक्स पूरा। इसके लिए ऐसे बाबा ने, एक बाबा ने इतना काम करते हैं, एक एक बाबा का बच्चा बन करके, योगी बन करके, ऋषि बन करके कृषि विद्या में आगे बढ़ेंगे अर्थात कर्म क्षेत्र को बढ़ाएंगे। मैं अश्योर करना चाहता हूँ, इन 10 ईयर्स हमारे देश के प्रधानमंत्री 1947 तक, माना 50 ईयर्स के अंतराल में विश्व गुरु बनाने के चलते, मैं कहता हूँ 10 साल में बना सकते हैं इसको, परंतु आपको मोटिवेशनल पावर चाहिए, प्रतिज्ञा चाहिए, दृढ़ विश्वास चाहिए, स्वयं के प्रति विश्वास चाहिए, ईश्वरी शिक्षा के प्रति निश्चय होना चाहिए, और आध्यात्मिक बात को डेली प्रैक्टिस चाहिए, राजयोग का अभ्यास चाहिए, और इस अभ्यास करेंगे तो ऑटोमेटिकली भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत विश्व गुरु बनेगा तो विश्व ऑटोमेटिकली विश्व शांति होगा, नहीं तो क्या होता है, एक ट्रंप पैदा 10 ट्रंप पैदा हो जाते हैं। ऐसी दुनिया हमको नहीं चाहिए, ऐसी युद्ध नहीं चाहिए, हमारा चाहिए बुद्ध, चाहिए गांधी, चाहिए महावीर, चाहिए स्वामी विवेकानंद, चाहिए ऐसे लोगों को पैदा करने का काम करना चाहिए, ब्रह्मा बाबा जैसे व्यक्ति को चाहिए, दादी प्रकाशमणि जैसे व्यक्ति, गुलजार दादी की व्यक्ति, ऐसी दादियों को बनाने के लिए ताकत होना चाहिए। ऐसा दादियों का एक एक बने तो मैं समझता हूँ इन 10 साल के अंतराल में भारत विश्व गुरु बनेगा और सब एक एक ब्रह्म कुमार कुमारियां भारत को विश्व गुरु बना करके विश्व को एक सुंदर दुनिया बनाएंगे। ऐसा बनाने वाले आप सबको मैं नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वाणी को विराम करता हूँ, ओम शांति कहता हूँ, ओम शांति।
बहुत सुंदर, अपने शब्दों से सभा के अंदर एक ओज और एक तेज को प्रसारित करने वाले आदरणीय ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय भाई जी का तहे दिल से धन्यवाद है। अभी समय है आभार दर्शन का। आभार हृदय की वो भाषा है जो दूसरे के दिल को प्रसन्न कर देती है। आभार हमारी संस्कृति है, आभार हमारी मानवता है, आभार हमारे देश की एक बहुत ही सुंदर विनम्रता है।
आभार दर्शन करेंगे आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार सुमंत भाई जी, आप कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। आपने यौगिक संबंध से कृषि से संबंधित लगभग 15 यूनिवर्सिटियों के अंदर अपनी प्रस्तुति दी हुई है और यौगिक कृषि से संबंधित अपने विचारों को आपने यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी रखा है। आदरणीय सुमंत भाई जी को मैं आमंत्रित करती हूँ आज के कार्यक्रम की आभार विधि के लिए। आभार के पश्चात आप सभी यहाँ ही रहेंगे। आप सभी को मालूम होगा कि भगवान के घर की पवित्र भेंट इस प्रोग्राम के बाद आप सभी आए हुए मेहमानों को यहाँ से प्राप्त होने वाली है।
ओम शांति। आज का यह सुंदर कार्यक्रम आध्यात्मिकता द्वारा सशक्त किसान और समृद्ध गांव के शुभारंभ कार्यक्रम में सर्वप्रथम सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा को और उनके साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा और हमारे निमित्त दीदिया और वरिष्ठ भाई बहनों को और हमारे विशेष आज की सभा की शोभा आदरणीय सुदेश दीदी जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, आपने बहुत सुंदर जो है प्रस्तुति अपने रखी और आपने 5 कर्मों की खेती के बारे में भी बताया और 5 बीज जीवन में बोने के लिए हमें संकल्प दिया। ऐसे सुंदर वचनों के द्वारा हम सबको ज्ञान गंगा के द्वारा हम सबको निहार लिया। ऐसे आदरणीय दीदी जी का विशेष धन्यवाद। आदरणीय मृत्युंजय भाई जी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमारीज, आपने भी अध्यक्षीय प्रवचन के माध्यम से बहुत सुंदर उद्गार प्रस्तुत किया। भाई जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मेहमान श्री सुरेश डॉक्टर सुरेश नाडा गौडार जी, आपने एमओई की बात ही नहीं किया है बल्कि एक बहुत सुंदर प्रस्तुति अपना पंचायत राज को परिवर्तन करने के लिए, व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए, आध्यात्मिकता को साथ लेने के लिए आपने संकल्प लिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। हमारे साथ में हितेश पटेल जी जो कि प्राकृतिक खेती बोर्ड का आप चेयरपर्सन हैं, चेयरमैन हैं, आपने भी आध्यात्मिकता का दर्शन एक तरह से कृषि में किस तरह से जरूरत है हम सबके सामने प्रस्तुत किया। आपका भी बहुत तह दिल से धन्यवाद भाई जी। हमारे बीच में आज प्रभाग की अध्यक्षा जिनके संकल्प से ही आज यह कार्यक्रम साकार हो रहा है, दीदी जी ने विशेष करके आध्यात्म का महत्व बहुत सुंदर स्वरूप से स्पष्ट किया। आदरणीय दीदी जी का भी विशेष धन्यवाद। हम सबका स्वागत करने वाले विशेष प्रभाग की उपाध्यक्ष आदरणीय राजू भाई जी का भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं। हम सबके बीच में आदरणीय बद्री विशाल भाई जी हैं जिन्होंने बहुत सुंदर वक्तव्य द्वारा इस सब्जेक्ट को पूरी तरह से स्पष्ट किया। अपने स्वच्छ छवि के धनी आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति के द्वारा हम सबको आज के विषय को स्पष्ट किया। ऐसे बद्री विशाल भाई जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय सुनंदा दीदी जी भी हमारे सामने उपस्थित हैं। आपका भी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय तृप्ति दीदी जी जिन्होंने इस पूरे मंच संचालन का कारोबार को बहुत सुंदर स्वरूप से संभाला, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए डांस प्रस्तुत करने वाले मेहसाना ग्रुप का मधुरवाणी के ग्रुप ने बहुत सुंदर गीत को भी प्रस्तुत किया, आपका भी धन्यवाद करते हुए। इस पूरे आयोजन के पीछे बहुत सुंदर व्यवस्थाएं और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की दिन रात की मेहनत जो है चल रही है, चाहे एकोमोडेशन हो, ट्रांसपोर्ट हो, लाइट हो, साउंड हो, स्वच्छता का विभाग हो, हर विभाग ने दिन रात लगा करके आप सबकी सेवा करने के लिए विशेष प्रयास किया है, आप सबका भी धन्यवाद। अगर आप न होते तो सभा की शोभा नहीं होती। तो आपको यहाँ तक पहुँचाने वाले हमारे सभी टीचर्स बहने, आश्रम के टीचर्स बहनों का भी विशेष धन्यवाद। आपके साथ में आने वाले जो गाइड भाई बहने हैं, आपका भी धन्यवाद। और यहाँ पे सभा में उपस्थित सभी वैज्ञानिक, सभी कृषि अधिकारी, सभी ग्रामीण संबंधित अधिकारियों को भी, और हमारे वरिष्ठ जनों, और विशेष करके CSR हेड भी यहाँ पे पहुंचे हैं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हेड भी यहाँ पे पहुंचे हैं। ऐसे विशेष महान हस्तियां और विभूतियों को विशेष धन्यवाद करते हुए इस धन्यवाद प्रस्ताव को पूरा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। आदरणीय सुमन भाई जी का भी हम सभी दिल से धन्यवाद, आभार करते हैं। अब समय है स्टेज के विशिष्ट मेहमान, आज के हमारे उद्घाटक आदरणीय डॉक्टर सुरेश भाई और आदरणीय भ्राता हितेंद्र भाई पटेल, जो कितने दूर से हम सभी के मध्य में आए हैं और आज की सभा को चार चांद लगाए हैं। हमारी दोनों ही वरिष्ठ दीदियां, आदरणीय राजयोगिनी सुदेश दीदी जी तथा आदरणीय राजयोगिनी सरला दीदी जी, शॉल और स्मृति भेंट अर्पण करके परमात्मा के घर के पवित्र प्रसाद से दोनों ही विशिष्ट हस्तियों को सम्मानित करेंगे। भाई साहब, आपको यह शॉल जो मिल रही है वो भगवान के घर का सुरक्षा कवच है। सदा ही ईश्वर आपकी रक्षा करते रहे। आपके द्वारा दिन दुगुनी, चार चौगुनी सेवा कराते रहे। इसी शुभ दुआओं के साथ यह ईश्वरीय भेंट है। आदरणीय सरला दीदी जी परमात्मा के घर का पवित्र प्रसाद अर्पण कर रहे हैं। हम सभी तालियों से इस सम्मान की श्रृंखला को जोड़ करके रखेंगे। अभी आदरणीय भ्राता हितेश भाई जी को भी शॉल अर्पण करके आदर और सम्मान किया जा रहा है। आदरणीय दीदी जी, बहुत ही सुंदर सुप्रीम शॉल, परमात्मा शिव का प्रतीक आपको भगवान गिफ्ट में मिल रहा है। कितनी बड़ी बात है, स्वयं भगवान गिफ्ट में मिल रहा है, यह तो जीवन का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो ऐसी दुआओं भरी बहुत ही सुंदर सौगात और सम्मान स्वीकार कर रहे हैं। प्रभु स्मृति में हम सभी बैठे, उनसे पहले कुछ एक सूचनाएं हैं। आप सभी अभी ध्यान यहाँ पर देंगे तो अभी आप सभी इन सूचनाओं को ध्यान से सुन सकेंगे। यहाँ पर दो लाइनों में आप सबको सौगात मिलेगी और सौगात के पश्चात आप सभी भोजन पर प्रस्थान करेंगे। भोजन की व्यवस्था, बैठिए, अभी 3 मिनट योग करके फिर हम प्रस्थान करेंगे।